तो प्रत्यक्षावागमं धर्म्याम, तो इतना शक्तिशाली है, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, श्रवणम कीर्तनम इतना शक्तिशाली है कि इसी जीवन में उसका अनुभव कर सकते हैं हम लोग, जैसे नारद मुनि ने अनुभव किया। तो लेकिन प्रभुपाद जी क्या बताए आरंभ में, भक्तों के संग में इस श्रवण कीर्तन का करने से ही उसका हमें अनुभव होगा, ऐसे बोलते हैं। हम और मुरलीधर को चर्चा कर रहे थे कि शुद्ध भक्तों के संग में या उनका उच्चिष्ट लेने से, उनके संग में श्रवण कीर्तन करने से क्या इतना परिवर्तन होता है उसके बारे में। तो नारद मुनि वैसे तो वो शूद्र परिवार में जन्म लिए, फिर भी कितना परिवर्तन हो गया उनके अंदर। तो ये भक्ति के शक्ति है, श्रवण कीर्तन के शक्ति है, तो हम लोग उसको तभी अनुभव कर सकते हैं जब हम वो शुद्ध भक्तों के संग में या शुद्ध भक्तों के सेवा में, जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे, येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़गत। वो कैसे होता है, महत् सेवा द्वारम आहुर विमुक्ते तमो द्वारम योषितां संगी संगानां। सो सातवें अध्याय के 28वां श्लोक, उसके तात्पर्य में ये वर्णन करते हैं श्री प्रभुपाद। महत् सेवा से, या महत् महत् मतलब जो महान भक्त होते हैं। सो श्लोक क्रमांक 3, अशब्ददान पुरुष धर्मस्यास्य परं तपा अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो इस मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में जो को जिनको श्रद्धा नहीं है वो भगवान को प्राप्त नहीं करते हैं। और इस अप्राप्य माम, भगवान को प्राप्त नहीं करने से क्या होता है, फिर से निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि, ऐसे कहते हैं। तो पिछले अध्याय में भगवान ने दो मार्गों का वर्णन किया, जिसके द्वारा एक व्यक्ति पूरी तरह से मुक्त होकर ब्रह्म में प्रवेश करता है और दूसरा ऊंचा लोक में जाकर वापस आ जाता है। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि जो मुझे प्राप्त नहीं करता वो फिर से इस भौतिक जगत में वापस आएगा। प्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। तो यहाँ पर जो शब्द अशब्द दान है वो महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी पहले तात्पर्य के पहले लाइन में क्या कहते हैं, श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग को पाना कठिन है, यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है, महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों के अनुसार भी अभोग लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। प्रमाणों को सुनकर भी अभोग लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, जिसका अर्थ है कि जब हम लोग महापुरुषों से या महान भक्तों से वैदिक प्रमाणों का, मतलब विशेष करके गीता भागवत को श्रवण करने से क्या हो जाता है, हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाता है। हम लोग चर्चा किया था पहले, किए थे पहले, कि श्रद्धा शब्द का अर्थ ही यही है कि गीता भागवत से उपदेशों को श्रवण करने से जो भगवान की सेवा करने की जो आकर्षण जागृत हो जाता है उसको श्रद्धा कहते हैं। या यहाँ पर प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं, श्रद्धा शब्द कहे शुद्र निश्चय कृष्ण भक्ति, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे शुद्र निश्चय कृष्ण कृष्णे भक्ति कहले सर्वकर्म कृतज होए। तो ऐसा विश्वास जिसके द्वारा एक व्यक्ति निश्चय करता है कि कृष्ण भक्ति करने से सब कुछ सफल हो जाएगा, तो वो श्रद्धा, उसको श्रद्धा कहते हैं, या अटूट विश्वास है, ये सुदृढ़ निश्चय, तो उसको श्रद्धा कहते हैं। और वो कैसे होता है, यहाँ पर प्रभुपाद जी भागवत से उल्लेख कर रहे, चौथे श्लोक, चौथे चौथे स्कंद से, यथाथर्वोर्मूल निषेचन तृप्यन्ति यस्कंद तत्स्कंदभुजोपशाखः प्राणोपहारस्य यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणम अच्युतेच्छा। वृक्ष की जड़ को सिंचन से उसकी ढाले टहनियां तथा पत्तियां तुष्ट होती है, और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। हम अलग से देवी देवताओं का पूजा करने का जरूरत नहीं है, अलग से पत्ते फल फूलों को शाखाओं को पानी देने का जरूरत नहीं है। तो और इंद्रियों को, शरीर को, इंद्रियों को अलग से अन्न देने का नहीं, जरूरत नहीं है। प्राणोपहारस्य यतेन्द्रियाणां तथैव सर्वारणम् अच्युतेज। आहार को, आहार प्राणोपहारस्य, प्राण को आहार देना चाहिए, वो अर्थ होता है। पेट को जनरली उसको ऐसे अनुवाद किया जाता है। प्राण क्या कर देगा, सभी इंद्रियों को शक्ति प्रदान करेगा, ऐसा भी उसको समझ सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं, अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वह गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो, मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वह इस जीवन दर्शन से विश्वास हो जाता है तो यही श्रद्धा है। थोड़ा इसको अंग्रेजी में पढ़ने से आपको थोड़ा और क्या हो जाएगा, तीव्रता। इफ वन इज कन्विंस्ड ऑफ दिस फिलोसफी ऑफ लाइफ, दैट इज फेथ, जैसे कहते हैं, उसको श्रद्धा कहते हैं, है ना, उसमें थोड़ा शक्ति है ना तो ये दर्शन से एक व्यक्ति को क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, या कन्विक्शन मतलब उसमें दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तब वो क्या हो जाता है, उसको श्रद्धा कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भगवद गीता पढ़ के ये निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए, ये निष्कर्ष है भगवद गीता का, कि सब कुछ त्याग कर भगवान के शरण में, सर्वधर्मां परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं तां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। तो इसको श्रद्धा कहते हैं। भगवत गीता का उपदेश हमें इस स्तर तक लेके आना चाहिए, नहीं तो इसका अर्थ होता है हम लोगों ने भगवत गीता नहीं समझा और उसके कारण हमारे अंदर वो श्रद्धा जागृत नहीं हुआ। तो लोग भगवान के शरण में नहीं आना चाहते, हम प्रचार करते हैं ना लोगों को, शरण में जाओ शरण में जाओ, इसका अर्थ है कि वो भगवद गीता को अच्छी तरह से समझा नहीं। भगवद गीता को अच्छी तरह से समझ लिया तो भगवान के शरण जाए बिना नहीं रह सकते। तो वो अश्रद्धदान लोग हैं, अभी तक वो भगवद गीता का उपदेश सुनकर ये श्रद्धा को जागृत नहीं किया है, उनको अश्रद्धदान कहते हैं, वो लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, फिर वापस यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसको ही प्रभुपाद जी वो कहते हैं, दोज हु डोंट हैव फेथ इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ भगवद गीता, दे डोंट हैव एनी स्टैंडिंग इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। पता है हम लोगों ने पढ़ा था उसको चौथे अध्याय के 42वां श्लोक में, वहां पर भी श्रद्धा के बारे में आता है ना, संशय आत्मा अश्रद्ध अज्ञस्य श्रद्धदानस्य संशय आत्मा विनश्यति, और उसके बाद के ऐसे श्लोकों में भी वहाँ पर वो प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में, उनको कोई कृष्ण भावनामृत में वो स्थिर नहीं रह सकते, उनका कोई स्थान नहीं होता है, अश्रद्धालु लोगों का, ऐसे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि नाउ द डेवलपमेंट ऑफ दैट फेथ इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण भावनामृत क्या है उसका परिभाषा दे रहे हैं। ये श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत के विकास ही कृष्ण भावनामृत के विधि है। द शब्द आता है ना, ही डालना चाहिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा, तभी जोर होता है कि नहीं। द शब्द आता है नाउ द डेवलपमेंट ऑफ दैट फेथ इज द प्रोसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वही कृष्ण भावनामृत का प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या होता है, भक्ति श्रद्धा से आरंभ होता है, उसके बाद के नौ स्तर हो ना, ये आठ स्तर है उसके बाद के। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन प्रक्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। तो फिर श्रद्धा के बाद क्या होता है, साधु संग आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि श्रद्धा वहां पर रुक जाती है, और साधु संग के बाद भजन क्रिया आता, भजन साधु संग रुक जाता है। अभी भजन क्रिया आरंभ किया और साधु संग करना बंद कर दिया, वो निर्जन भजन कहते हैं ना उसको, निर्जन भजन वो भी है, निर्जन भजन भी, लेकिन साधु संग खत्म नहीं होता है। निर्जन भजन मतलब साधुओं के संग में करना। सो कृष्ण भक्ति मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मियो तेहो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण प्रेम जन्म जागृत होने के बाद भी फिर भी ये प्रमुख अंग रह जाता है। तो ऐसे साधु संग भी बढ़ाएगा, भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति के स्तर पर आने के बाद भजन क्रिया बंद नहीं होता, ऐसे वो भी बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ये श्रद्धा का विकास ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे। तो श्रद्धा बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए, बढ़ते जाना चाहिए। आरंभ में वो गुरु की, गुरु में श्रद्धा होता है, इसलिए उसको व्यवसायत्मिक बुद्धि कहा गया है ना। व्यवसायत्मिक बुद्धि एक गुरु नंदना बहुशाखा बुद्धयो व्यवसाय। उस श्लोक में हम लोगों ने चर्चा किया, गुरु के मिशन में या गुरु की सेवा, गुरु सेवा में जो श्रद्धा होता है तो उसको व्यवसायत्मिक बुद्धि कहते हैं, अटूट श्रद्धा जो होता है। जब गुरु में श्रद्धा टूट जाती है तो वो पूरा हमारा आध्यात्मिक जीवन में ही क्या है, एक क्रैक है, एक दीवार के, दीवार में क्रैक आता है ना, वैसे वैसे क्रैक है। तो ऐसे हम लोगों को ऐसे श्रद्धा आरंभ होके वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो भक्ति की प्रक्रिया में, भगवान में, भक्तों के संग में, ऐसे तो यही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। और श्रील प्रभुपाद इसके आगे बोलते हैं कि श्रद्धा के अनुसार अलग अलग प्रकार के, तीन प्रकार के भक्तों का वो वर्णन करते हैं। तो आप लोग बाद में क्या कीजिए, हम उसको आप, अभी हम लोगों ने उसका तात्पर्य पढ़ लिया है, बाद में इनके लक्षण को ऐसा एक यादी बना, लिस्ट बनाई है ना, क्या क्या अष्ट का क्या लक्षण, तीन प्रकार के भक्त होते हैं श्रद्धा के अनुसार और शास्त्रों के ज्ञान, दो दृष्टिकोण से ये विभाजन किया गया, श्रद्धा और शास्त्र के ज्ञान के अनुसार इन दो तीन प्रकार के भक्तों का, और एक और भी है आसक्ति के अनुसार। वो आसक्ति भी क्या है, श्रद्धा के ही विभाग है ऐसे बोलते। तो हम लोग उनके बारे में थोड़ा चैतन्य चरितामृत से पढ़ेंगे, अब बाद में ये तात्पर्य को पढ़ के उनके लक्षणों को अच्छी तरह से लिख लीजिए। कनिष्ठ का क्या क्या, एक दो तीन चार ऐसे कितना लक्षण बताया है प्रभुपाद जी ने, उसको लिखते जाइए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जो श्रद्धावान है वो भक्ति के अधिकारी बनते हैं, उसके अनुसार कनिष्ठ, उत्तम मध्यम कनिष्ठ, ऐसे तीन प्रकार के भक्त बताए गए। तो कृष्ण ही सर्वोच्च, सबका भगवान है, वही क्या है, सबका स्रोत है, समम वनम परम सत्य है। तो जो इसको समझते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं। उस श्रद्धा के कारण वो भक्ति में लग जाता है। शास्त्र युक्ते निपुणा दृढ़ श्रद्धायान रा उत्तम अधिकारी से ही धाराय संसारा। तो पहले उत्तम का यहाँ पर वर्णन किया गया। शास्त्र युक्ते सुनिपुणा दृढ़ श्रद्धायान रा, शास्त्र युक्ति में बहुत ही निपुण निपुण रहते हो। शास्त्र युक्ति मतलब युक्त, युक्ति मतलब तर्क। शास्त्र के आधार का जो तर्क है उसमें बहुत वह सुनिपुण होते हैं। भौतिकवादी जो मायावादी होते हैं वो लोग भी क्या तार्किक होते हैं, बहुत तर्क में दक्ष होते हैं वो लोग, लेकिन उनका तर्क क्या है, शास्त्र के अनुसार नहीं होता। इसलिए शास्त्र के अनुसार तर्क करना चाहिए। प्रभुपाद जी कभी कभी इसको फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन कहते थे, मेंटल स्पेकुलेशन और फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन और दार्शनिक चिंतन, ऐसे दो शब्द होते हैं। दार्शनिक चिंतन स्वीकृत है लेकिन मानसिक चिंतन स्वीकृत नहीं है, क्योंकि वो अपूर्ण ज्ञान मनोधर्म। शास्त्र युक्त सुनिपना, कोई वाद विवाद करते हैं शास्त्र के आधार पर, ये बहुत ही उसमें निपुण रहते हैं, उसको हरा देते हैं। दृढ़ श्रद्धा है अंडरा, और उनका श्रद्धा भी बहुत अटूट रहता है, बहुत ही दृढ़ रहता है, दृढ़ निश्चय। उत्तम अधिकारी से ही थारे संसार, उसको उत्तम अधिकारी कहते हो, वो शास्त्र थारे संसार मतलब संसार को उद्धार करते हैं, दुनिया को ही उद्धार करते हैं। और इनके बारे में रूप गोस्वामी क्या कहते हैं, भक्ति रसामृत सिंधु में आरंभ में इनके बारे में वर्णन आता है। शास्त्र युक्त च निपुणः सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धाधिकारी यः स भक्ता उत्तमो मतः। शास्त्र युक्त च निपुणः, शास्त्र में युक्ति में निपुण है, सर्वथा दृढ़ निश्चय, वो भी हम प्रौढ़ श्रद्धाधिकारी यः। तो प्रौढ़, प्रौढ़ मतलब इनका जो श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा तो हम लोगों ने चर्चा किया, इनका श्रद्धा क्या है, बहुत ही गहरा होता है, प्रौढ़ मतलब गहरा होना। तो इन भक्त को उत्तम कहते हैं। शास्त्र युक्ति ना ही जानी दृढ़ श्रद्धावान मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। तो शास्त्र युक्ति को नहीं जानते हैं, शास्त्र के आधार पर वाद विवाद नहीं कर सकते, वो दूसरों को हरा नहीं सकते हैं या दूसरों को वो कन्विंस नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका श्रद्धा वो दृढ़ रहता है, उनको कोई विचलित नहीं कर सकते, वो बहुत ही स्थिर रहते हैं भक्ति मार्ग में, वो दृढ़ श्रद्धा। मध्यम अधिकारी से ही भाग्यवान, वो भी महाभाग्यवान है, ऐसे श्रद्धा जागरण करना बहुत ही भाग्य सौभाग्य की बात है। यह शास्त्रादिश्व निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमः। तो रूप गोस्वामी कहते हैं शास्त्रादि में अनिपुणः, निपुण नहीं है लेकिन श्रद्धावान है। यहाँ रखो मल श्रद्धा से कनिष्ठ जना क्रमे क्रमे ते हो भक्त है वे उत्तम। जिनका श्रद्धा कोमल रहता है उनको कनिष्ठ कहते हैं। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में उनके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन करते हैं। वो ज़्यादा प्रगति नहीं करते, कभी कभी उनका पतन भी हो जाता है, और भक्ति में आगे बढ़ने के लिए उनको बहुत ही तकलीफ होता है। कितना महत्वपूर्ण है ना ये गीता भागवत को अध्ययन करना, उन उपदेशों को समझना, उसके आधार पर ये श्रद्धा जागृत करना है ना, या भक्तों के संग से श्रद्धा यहाँ पर हो, जैसे प्रभुपाद बोलते हैं यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्यते। जिसका श्रद्धा कोमल श्रद्धा, कनिष्ठ कनिष्ठ कहाँ है निष्ठा, ऐसे उसका फिर उसके बाद में बोलते हैं प्रभुपाद, अंत में वो बोलते हैं देखिए श्रद्धा के भी तीन विभाग है, ऐसे बोलते हैं। वो कनिष्ठ भी मध्यम हो सकता है, कभी कभी तृतीय कोटि के व्यक्तियाँ की प्रवृत्ति कर्म योग या ज्ञान योग की ओर रहती है, और कभी कभी वे विचलित होते रहते हैं, किंतु जो ही उनके ज्ञान तथा कर्म योग का संदूषण निकल जाता है, वे कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण की प्रति श्रद्धा भी तीन अवस्थाओं में विभाजित है, वो श्रद्धा भी तीन अवस्था में विभाजित हो जाता है। और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता का भी वर्णन हुआ है। तो भागवत में भी ये हम लोगों ने चैतन्य चरितामृत से और भक्ति रसामृत सूत्र से अभी चर्चा किया, तीन श्रद्धा और ज्ञान के अनुसार तीन कोटि के भक्तों को। और भागवत में भी इस श्रद्धा को भी तीन विभाजन किया गया, या उसको ही रति और प्रेम या आसक्ति कहते हैं, उसके अनुसार भी तीन प्रकार के भक्तों का भागवत में वर्णन हुआ है। तो उनके बारे में हम लोग रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतमा एकादश स्कंदे तारे कोरी आचे लक्षण। तो एकादश स्कंद 11वें स्कंद में तो वो श्लोकों को हम लोग पढ़ेंगे। सर्वभूतेषु य पश्ये भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मान्य एष भागवतोत्तमः। सभी जीवों को भगवान में देखते हैं, भगवान को सभी जीवों में देखते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम भागवत कहा गया है। मतलब वह सब जगह वो भगवान को देखते हैं, सब कुछ भगवान के संबंध में देखते हैं, वो सब कुछ भगवान के प्रसन्नता के लिए ही या भगवान के आनंद के लिए वो सब कुछ अर्पण करते, क्योंकि सब कुछ भगवान के संबंध में देखते हैं। तो ऐसे भक्त को भागवत उत्तम कहा गया। ईश्वरा तदिनेशु भालिशेषु द्विषु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा य करोति स मध्यम। ये दूसरे वर्ग के भक्त है, मध्यम भक्त है। ये चार चीजों चार लोगों में भेद करते हैं। ईश्वर तद अधिनेशु उनके भक्त, बालिशेषु जो मासूम लोग होते हैं, और द्विषु च द्वेष करते हैं नास्तिक होते हैं, इन चार लोगों में वो उनको भेद करने की ज्ञान होता है और उसके आधार पर उनके साथ ऐसे अलग अलग बर्ताव करते हैं। भगवान का प्रेम प्रेम करते हैं, वो प्रेम का लक्ष्य मानते हैं अपने भगवान को। मैत्री मतलब भक्तों के साथ वो मित्रता का भावना या मित्रता बढ़ाते हैं, वो उनके संग में आते हैं। बालिशेष कृपोपेक्षा जो मासूम लोगों के ऊपर कृपा करते हैं, उनको प्रचार करते हैं, और या कृपो उपेक्षा मतलब उनको उपेक्षा करना, तिरस्कार करना, उनसे दूर रहना। किनके साथ? जो द्वेष विशेष द्वेष करते हैं भगवान को या भक्तों को, या जो लोग क्या करते हैं, निंदा करते हैं भगवान को, ऐसे नास्तिक भाव को प्रकट करते हैं। बस वास्तव में तो ऐसे कहा गया है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तो ऐसे कहते हैं कि इनके ऊपर वास्तव में जो भगवान है, ये जो भक्त है मध्यम भक्त, उनको अपेक्षा करके उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। क्यों? उनको प्रचार करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो लोग और भड़क उठेंगे, है ना, भड़क के और ज्यादा भगवान के प्रति वो अपराध करेंगे, उसके कारण उनका गति अच्छा नहीं होता। ऐसे उनको दूर रखे वो क्या करते हैं, कृपा करते हैं उनके ऊपर, ऐसे भक्ति सिद्धांत सबसे ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए हम लोग द्वेषी लोगों के उनसे उनके साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं होता। ठीक है। अर्चयामेव हरे पूजाम या श्रद्धयो श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चारणेषु स भक्त प्राकृत स्मृतः। अर्चयामेव हरे पूजाम या श्रद्धये हते, बहुत श्रद्धा पूर्वक क्या करता है, भगवान का अर्चन विग्रह का पूजा करता है। न तद्भक्तेषु चारणेषु, लेकिन वो उनके भगवान के भक्तों को और अन्यों को क्या नहीं करता, सम्मान नहीं करता है। वो क्या है, प्राकृत मैं और भगवान के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, उसका वैसा भरता होता है। या प्रभुपाद जी उनको कहते थे दंडवत भक्त कहते हैं उनको, सिर्फ वो दंडवत करने में उनको श्रद्धा रहता है, नाम लेने में या भक्तों के संग करने में, उनके संग में श्रवण करने में। ऐसा आता है ना, लोग आके दंडवत करके चले जाते हैं, लोग श्रवण नहीं करते हैं, है ना, भक्तों का श्रवण नहीं करते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा है, भगवान के सामने आके एक दफे एकदम दंडवत करके तो जाओ, ऐसे प्रभुपाद जी हिंदी में कहते हैं ना। तो वो भी अच्छा है, लेकिन उनको नवसखी भक्त कहते हैं या कनिष्ठ भक्त कहते हैं। तो ऐसे तीन प्रकार के भक्त हैं। 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय के 45, 46 और 47 श्लोक क्रमांक, ये सब ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 4, मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूं, ऐसे कहते हैं। तो इस श्लोक में भगवान उनके और भौतिक प्रकृति के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में भगवान और भौतिक प्रकृति के बीच में अचिंत्य वेदाभेद तत्व का यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, सब कुछ हमें अचिंत्य वेदाभेद तत्व के अनुसार समझना चाहिए। तो भगवान और प्रकृति के बीच सिर्फ यही श्लोक नहीं, आगे कई श्लोकों में इसका वर्णन होता है, कैसे भगवान और भौतिक प्रकृति भगवान के शक्ति है और उनसे एक भी है और भिन्न भी है, कैसे उसमें भी विद्यमान भी रहते हैं और नहीं भी रहते हैं भगवान, ऐसे वर्णन। मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त मूर्ति के द्वारा, अव्यक्त मूर्ति मतलब जो हम लोग उसको देख नहीं सकते, ऐसे स्वरूप के द्वारा सब जगह भगवान फैले रहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन कर रहे, इसका अर्थ ये तो नहीं है कि भगवान सब जगह फैले हैं तो उनका अस्तित्व नहीं होता है, है ना? उनका अस्तित्व नहीं होता ऐसा नहीं है, या उनका अस्तित्व खो जाता ऐसा नहीं है, वो सब जगह विद्यमान या सब जगह क्या बोलते हैं उसको, अव्यक्त रूप में व्याप्त हो जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनका अस्तित्व चला जाता है। मायावादी लोग ऐसे कहते हैं, भगवान क्या हो गए, इस ब्रह्मांड के रूप में प्रकट हो गए हैं और उनका अस्तित्व चला गया, या जीवों के रूप में प्रकट हो गए हैं और उनका अस्तित्व चला गया है, ऐसे बोलते सोचते हैं उनके धारणा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं, राजा का जो शक्ति होता है कैसे व्याप्त है इस पूरा संसार में, उनके शक्तियों के द्वारा भगवान व्याप्त हो जाते हैं। तो सब कुछ भगवान के शक्ति है, 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने बताया ना, सो भूमि रपो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारा इति अमे भिन्न प्रकृति अष्ट। ये भौतिक प्रकृति इन 8 तत्वों से बना है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन 8 तत्वों में हम लोगों ने देखा 24 तत्व होते हैं, उस दिन हम लोग चर्चा किए ना। और इसके परे भी एक और प्रकृति है, क्योंकि क्योंकि ये भौतिक प्रकृति जड़ है, इसके चेतन का संपर्क जरूरत होता है, इसलिए जीव भूतम अपरयम इतस्वर्ण्यम विधि में प्रकृति पराम जीवभूतम महाभाव एदम धारित जगत। सो जीव ये भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के बाद वो क्रिया इस भौतिक जगत में क्रियाएं आरंभ हो जाते हैं, कार्यकलाप आरंभ हो जाते हैं, सृष्टि के क्रियाशील हो जाते हैं भौतिक सृष्टि। तो इन दोनों शक्तियों से भगवान बोलते हैं कि अहम प्रश्नस्य जगता प्रभव प्रलयस्तता, ऐसे बोलते हैं, ये तद्योनि निभूतानि सर्वाणीत्युपदारया। इस जगत में ये दोनों शक्ति क्या है, इस जगत में जो कुछ भी है उसका दोनों का योनि है, जो कुछ भी है उसका योनि है, स्रोत है, माता है, माता है, दोनों ये दो जो शक्ति है इसके कारण सब कुछ भौतिक जगत में व्यक्त हो जाता है। तो ऐसे भगवान अपने शक्तियों के द्वारा इस पूरा ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। तो ये अंतर मायावादी और जो वैष्णव दर्शन में या वेदों में उपनिषदों में जो दर्शन वर्णन हुआ है, तो मायावादी लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना कि वो लोग अपने व्यक्तिगत सत्ता को खो देते हैं, व्यक्तिगत व्यक्तित्व को खो देते हैं भगवान, उसको क्या कहते हैं, विवर्तवाद कहते हैं। विवर्त विवर्त मतलब उनमें ऐसे विकार हो गया, भगवान में विकार होने के कारण वो भौतिक शक्ति भौतिक जगत के रूप में प्रकट हो गए, ऐसे बोलते हैं, इसको विवर्तवाद कहते हैं। ब्रह्म ही परिवर्तित हो गया भौतिक प्रकृति और जीवों के रूप में, ऐसे उनका धारणा है। लेकिन वेदों में उपनिषदों में सभी शास्त्रों में यहाँ पर जैसे भगवद गीता में और भगवान स्वयं कृष्ण क्या बताते हैं, परिणामवाद का वर्णन करते हैं। परिणामवाद मतलब उनकी शक्तियों का परिवर्तन होता है, या शक्तियों के संयोजन से भौतिक जगत और जीवात्माएं प्रकट होते हैं इस जगत में, उसको परिणामवाद कहते हैं। तो ये इसमें अंतर है। इसको ओके, आप परिणामवाद बोल रहे हैं, हम विवर्तवाद बोल रहे हैं, तो कौन सा सत्य है? तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि परम सत्य मतलब उनके अंदर अचिंत्य शक्तियां होना चाहिए। शक्ति के बिना वो कैसे शक्तिमान हो सकते हैं? सूरज के बिना, सूरज के किरण के बिना, या उनके तेज या उष्णता के बिना क्या वो सूरज हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते? वैसे भगवान या परम सत्य क्या है, शक्तियों से युक्त है, वो शक्तिमान है वो, तो इसलिए वही परिवर्तित नहीं होते, उनकी शक्तियों का परिवर्तन होता है। वो शक्तियों को नकार दिया तो क्या हो जाता है, भगवान और उनमें और हम में क्या अंतर हो जाता है ना? पहले हम लोग चर्चा किया कि ये जो जीवात्मा है भगवान के अंश होने के कारण छोटे छोटे स्पुतनिक बना के अंतरिक्ष में क्या करते हैं, तो या छोटे ऐसे सेटेलाइट क्या बोलते हैं उनको, सेटेलाइट को उपग्रहों को करके वो स्थापित करते हैं जीवात्मा। लेकिन भगवान उनके साथ अचिंत्य शक्ति होने के कारण बड़े बड़े ग्रहों को भी वो स्थापित करते हैं आकाश में, ये अंतर है। तो भगवान के अंदर शक्ति नहीं है तो क्या हो जाता है, वो भी हमारे जैसे एक व्यक्ति हो जाते हैं, है ना? इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, ये पहला कदम है भगवान को या परम सत्य को जानने का, पहला परिभाषा क्या है, वो अचिंत्य शक्तियों से युक्त है, वो जानना चाहिए। तो इसलिए उनकी शक्तियों का परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, राजा, एक राजा होता है, वो राजा का शक्ति के द्वारा ही पूरा राज्य का संचालन होता है। इसका अर्थ ये नहीं कि सब जगह वो राजा ही रहते हैं, उनके शक्ति के द्वारा उनका उपस्थिति को महसूस किया जाता है सब जगह। वैसे ही भगवान उनके शक्तियों के द्वारा सब जगह व्याप्त है। जगद अव्यक्त मया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना, ऐसे हमें इसको समझना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर अंत में बोल रहे हैं ना, मोटा सा उदाहरण, क्रूड एग्जाम्पल, दैट इज मोटा सा उदाहरण, व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट इज द हिंदी वर्ड क्रूड, गुड, पता नहीं। ठीक है, तो फिर बाद में बोलते हैं, एतद् योनि भूतानि सर्वाण्युपदारय अहं कृष्णस्य जगतः एकांशे नश्य के जगत। उसके बाद में यद्यद् विभूति सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा अहं कृष्णस्य जगत, नहीं, विष्टव्याहम इदं कृष्णम एकांशे नश्य के जगत, मिक्सिंग अप टू वर्ड्स। तो ऐसे भगवान अपने शक्तियों के द्वारा विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में आरंभ में अव्यक्त मूर्ति के बारे में वर्णन करते हैं, अव्यक्त रूप। वास्तव में इस अव्यक्त रूप का अर्थ होता है उनके शक्तियों के द्वारा यहाँ पर व्याप्त रहते हैं, लेकिन एक और चीज हमें जानना चाहिए कि भगवान का रूप भी अव्यक्त होता है, हम ऐसे छर्म चक्षु से हम उनको देख नहीं सकते, इसीलिए भगवान का रूप, भगवान को एक नाम है क्या है तो अधोक्ष जो कहेगा, जिनको भौतिक इंद्रियों से हम लोग उनको अनुभव नहीं कर सकते, मतलब वी कैनॉट परसीव हिम बाय आवर मटेरियल सेंस परसेप्शन, तो इसलिए उनको अधोक्षज कहा गया, वही अर्थ होता है अव्यक्त मूर्ति का, क्या अर्थ होता है अधोक्षज, या दूसरे शब्दों में यहाँ पर प्रभुपाद जी वो श्लोक लेकर भगवान का, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवे ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुखे ही जिब्बादो स्वयमेव स्फुरतदा, उनके नाम रूप गुण लीलाओं को ये भौतिक इंद्रियों से हम लोग समझ नहीं सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के नाम यश लीला आदि भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता, उनको ये भौतिक इंद्रियों के परे है, चर्म चक्षु के द्वारा उनको देख नहीं सकते हम लोग, क्योंकि वो पूरा आध्यात्मिक है, हमारे इंद्रियां क्या है भौतिक है, हम जानते हैं ना अचिंत्य का अर्थ ही होता है कि वो इंद्रियों के परे है, प्रकृति के परे है, प्रकृति परम यश्च अचिंत तद अचिंत्य से लक्षण, पूरी तरह से आध्यात्मिक है, तो जो समुचित निर्देशन से भक्ति में लगा रहता है, सेवन मुखे ही जिब्बा, हमें सेवन मुख होना चाहिए, अभी बहिर्मुख या भुवन मुख हो गया, इसलिए उनको कभी हम समझ नहीं पाएंगे भगवान के नाम कैसा है, कैसे भगवान और नाम में दो कोई अंतर नहीं है उसको क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारा चर्म चक्षु या चर हमारे इंद्रिया भौतिक है, तो फिर कैसे समझा जा सकता है, सेवा करके सेवन मुख होके, कैसे आरंभ से जिह्वा से आरंभ होकर सेवन मुख होके हम भगवान को समझ सकते हैं, सो स्वयमेव समझ सकते हैं, मतलब इसका अर्थ है वो भगवान अपने आप को हमें प्रकाशित करते हैं, और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ते, भक्त लोग सेवन मुख होके जिह्वा के साथ भक्ति को आरंभ करके सेवन मुख होकर ऐसे प्रेम का अंजन जागृत, उनके नेत्र नेत्र ऐसे प्रेम के नेत्र उनको जागृत हो जाते, तब जाके सदैव 24 घंटा अपने हृदय में भगवान को वो दर्शन कर सकते, हालांकि भगवान अव्यक्त रूप मूर्ति है लेकिन भक्तों को वो अपने आप को दर्शन या मतलब वो प्रकट करते हैं, तो ये यही मार्ग है, तो दूसरे शब्दों में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कैसे भगवान अधोक्षज है, भगवान कृष्ण क्या है इंद्रिय गम्य के परे है, इंद्रिय गोचर इंद्रियों के इंद्रियों को अगोचर है, ये भी परम सत्य का एक परिभाषा है, लोग बोलते हैं ना मुझे भगवान को दिखाओ करके, लेकिन वो परम सत्य का परिभाषा ही यही है कि वो इंद्रियों के परे है, भौतिक इंद्रियों के परे है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि ऐसे यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, तो ये एक लक्षण होता है परम सत्य का, भगवान कृष्ण परम सत्य इसलिए है क्योंकि वो इंद्रियों के परे है, भौतिक इंद्रियों, न च मस्तानि भूतानि पश्यमे योगमेश्वरं भूत भूतभर्त्र च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, जरा मेरे योग ऐश्वर्य को तो ऐश्वर्य को देखो, यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ, तो पिछले श्लोक में वो बताया उन्होंने कि मेरे अव्यक्त रूप से सब जगह विद्यमान हूँ, सब कुछ मेरे अंदर है, मैं उनमें नहीं हूँ, उसको ये यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं कि मुझ में स्थित नहीं रहते हैं, तो ऐसे कहते हैं मुझ में स्थित नहीं रहते हैं, तो कैसे वो अलग रहते हैं भौतिक सृष्टि से, भगवान तो भौतिक सृष्टि उनको छू नहीं सकता है, वो भगवान उनसे अलग रहते हैं, सब का पालन करने वाले है, और सब में भूत स्तर वो विद्यमान भी है वो, लेकिन भूत भावना और सबका स्रोत भी है, वो पालक है और सर्वत्र व्याप्त हूँ, पालक हूँ, सर्वत्र व्याप्त हूँ, सब जगह विद्यमान हूँ। भूतस्थ मतलब सभी ये भौतिक सृष्टि में विद्यमान है, लेकिन और सृष्टि का कारण स्वरूप है, ये तीनों है, फिर भी वो क्या बोलते हैं, सब कुछ मेरे अंदर नहीं है और मैं भी अलग हूँ उनसे, ऐसे बोलते। यही उनका अचिंत्य योग ऐश्वर है, यही अचिंत्य वेदावे तत्व है। एक ही साथ भगवान सब जगह विद्यमान भी है और विद्यमान भी नहीं है, सबका स्रोत भी है, सबको पालन भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो अलग है इस भौतिक जगत से। तो ये अचिंत्य वेदावेद तत्व है। तो सबका पालन करने वाले, सब कुछ उनके ऊपर ही स्थित है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती, ऐसे कह रहे हैं। क्या नच मस्तानि भूतानि पश्चमे योग, तो मेरे द्वारा सृष्टि किए हुए सभी वस्तुएं मुझ में नहीं रहती, या सृष्टि भौतिक सृष्टि उनमें नहीं रहता है। सातवें अध्याय के सातवें श्लोक में क्या बताया उन्होंने, बताइए भगवान ने क्या बताया, मत्त परद्रम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूते मणिगणाय। तो क्या अर्थ है बताइए माधवेंद्र पूर्व को उसके। दोनों हंसते रहते हैं, समझना चाहिए ना कुछ चीज। मेरे ऊपर अन्य कोई नहीं हूं, मैं सर्वोच्च सत्य हूं। जैसे धागे के ऊपर मणि, माला में मणि रहता, मणि निर्भर रहता है, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, सब कुछ मेरे ऊपर ही स्थित है, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है। वहां पर क्या बताया उन्होंने, जैसे धागे के ऊपर सब कुछ निर्भर होता है माला में, वैसे सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसे या स्थित है, ऐसे बोलते। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मेरी वस्तु सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है बोल रहे। ये विरोधाभास लगता है ना, तो इसके उत्तर में प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं, एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे। देखे आप देखा होगा ना वो एटलस, एटलस देखा है ना, एटलस वो एक, हाँ
हाँ
तो हाँ वो क्या है, वो उठा रहा है पृथ्वी को, उठा रहा है कितना प्रयास से, बहुत दष्ट पुष्ट व्यक्ति है, प्रयास से वो पृथ्वी को उठा रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। जैसे आप लोगों देखा ना वो वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उनका मुंह देखे थोड़ा ऐसे बहुत मेहनत करते रहते हैं वो, है कि नहीं। तो सारी वस्तुएं स्थित उनके ऊपर नहीं है, या उनके ऊपर स्थित है, ऐसा नहीं कि वो भगवान बहुत मुश्किल से इसको उठा रहे, नहीं। इसका अर्थ है कि भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा आसानी से ये सब चीज कार्य कर रहे। गाम अविश्य च भूतानि धारया महमोजसा नच मस्तानी भूतानी, भूतानी मतलब ये भौतिक जगत के जो ग्रह नक्षत्र जो भी है वो क्या है, भूतानी कहते हैं उनको। अपने ओजस शक्ति के द्वारा मैं उनको धारण करता हूँ, या उनको उनके स्थिति में बना के रखता हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं। वो 15वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं ऐसे। तो भगवान उनको स्वयं उठाना नहीं पड़ेगा, उनकी शक्तियां क्या कर देते हैं उनको, पराश शक्तिर विविधैव श्रीवते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाचा, नतस्य कर्तम नतस्य कार्यम कर्णम च विद्यते या नतस नतस समस्या व्यतिको क्या या अधिकश्च दृश्यते सो स्वाभाविकी ज्ञान पराश शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च तो इतने सारे उनके शक्तियां हैं कि स्वयं ये क्या करते तो उनको कोई कार्य नहीं रहता है करने के लिए उनको ये सब उठाना वगैरह नहीं पड़ता है उनके ऊपर ये सब स्थित नहीं है हालांकि सब कुछ उनके ऊपर स्थित है हालांकि उनके सब कुछ स्थित है मतलब उनकी शक्तियों के ऊपर स्थित है वो शक्तियां अपने आप उनका सभी कार्य कर देते हैं इसलिए भगवान बोल रहे पश्यम पश्यमे योगमैश्वरम मेरे शक्तियों को तो देखो योगमैश्वरम ये अचिंत्य है ये शक्तियां पिछले हम लोग चर्चा कर रहे थे ना पिछले अध्याय के नवे श्लोक के तहत हम लोग चर्चा कर रहे थे तो कविम पुराणम मनुषाशितारम अनोरणीयांस्तम क्या है अनुस्मरे दिया सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात तो सर्वस्य दातारम अचिंत्य रूपम उनका रूप क्या है अचिंत्य है या अचिंत्य शक्तियों से युक्त है वहां पर शिल प्रभुपाद वो वर्णन करते हैं ना ये अचिंत्य शक्तियां हैं भगवान के पास तो हम लोग उसके बारे में चर्चा कर रहे थे कि कैसे वो पहला चीज है भगवान को जानने का तो इन अचिंत्य शक्तियों के द्वारा वो आसानी से ये सभी पृथ्वी ग्रह नक्षत्र सब कुछ वो संभाल लेते हैं वो या संभाल लेते यहाँ पर इसमें योग शक्ति मतलब पश्चिमे योग महेश्वरम मतलब यहाँ पर विशेष करके उनकी इच्छा शक्ति के बारे में बताया गया सिर्फ इच्छा करने के कारण ही क्या हो जाता है वो सब कुछ कार्य संपन्न हो जाता है ऐसे उनके शक्तियां हैं सिर्फ भगवान इच्छा करना चाहिए उनको उनको सत्य संकल्प कहते हैं उनका संकल्प हमेशा सत्य हो जाता है जो वो संकल्प इच्छा करते हैं इसको संकल्प शक्ति इच्छा शक्ति सब कुछ कहते हैं उसको योग शक्ति तो सिर्फ ऐसे करने से ही क्या हो जाता है सब कुछ संपन्न हो जाता है हम लोग पहले इच्छा करते हैं थिंकिंग फीलिंग विलिंग कहते हैं ना तो पहले इच्छा करते हैं उसको कार्यान्वित करने के बाद जरूरी नहीं कि वो फल प्राप्त भी होगा जरूरी नहीं है वो यशस्वी होगा लेकिन भगवान का सिर्फ भगवान को इच्छा करने से वो क्या हो जाता है सब कुछ वो संपन्न हो जाता है यहाँ पर शिल प्रभुपाद वो निरुक्त में योग शब्द का योग ऐश्वर्य का योग शक्ति के बारे में वर्णन किया गया या उनकी इच्छा शक्ति को वर्णन युज्यते नेन दुर्घटेशु कार्येषु पश परमेश्वर युज्यते नेन वो योग मतलब युज्य शब्द से आता है युज्यते नेन मतलब क्या है वो योग शक्ति पश्चमे योगमेश्वरम वो योग शक्ति को यहाँ पर निरुक्ति में वर्णन किया गया है कि परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अचिंत्य आश्चर्यजनक लीला करते रहते हैं दुर्घटेशु कार्येषु ऐसे कार्य करते हैं कोई उसको कर नहीं पाएंगे सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज ऐसे लीलाएं करते हैं कोई भी नहीं कर सकते ऐसे कार्य करते हैं कोई भी नहीं क्यों कर सकते वो क्योंकि उनके अचिंत्य शक्ति के कारण हम लोग कल चर्चा कर रहे थे उसके बारे में वो क्यों उठाते उनको जो ये उठाना उतना भारी नहीं होगा वो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते उसको उठाने के बारे में है ना लेकिन वो आसानी से उठा सकते हैं यही उनका दुर्घटेशु कार्येषु ये है तो जब इनके ऐसे शक्तियों को समझेंगे तो वो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे कि क्या है भगवान बाएं हाथ के छोटे उंगली में ये गोवर्धन को उठा सकते हैं ये गोवर्धन क्या छोटा पर्वत है ये तो बहुत बड़े बड़े ग्रहों को भी वो आकाश में स्थित वो उठा के वो अपनी शक्ति के द्वारा स्थित किया है जैसे ये लोग सोचते हैं कि ये जैसे भगवान ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ईसाई धर्म में ऐसे लोग सोचते हैं कि भगवान ये सब संपालन कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, मतलब बहुत उनको भारी हो गया होगा बारिश है, ऐसा दर्शन है, इसलिए यहाँ पर वैसे बताया प्रभुपाद ने, वो अटलास का उदाहरण दिया हम लोग। हाँ, वो लोग ग्वाल बाल भी ऐसे सोच रहे थे जब भगवान वो उठाए थे ना, क्या वो क्या गोवर्धन उठाए, तो उन्होंने सोचा भगवान को बहुत भारी लग रहा होगा कृष्ण को, हम थोड़ा उसको उनको सहायता करेंगे करके अपने वो लाठी है वो लगाया उन्होंने, लेकिन भगवान उनको थोड़ा दिखाया कि क्या होता है करके, थोड़ा उसको नीचे कर दिया, हाथ में उनको नीचे कर दिया, तो क्या हो गया सभी वो उनके लीला है उनके भक्तों के साथ, वो अलग बात है, लेकिन ये ऐसे गलत नहीं, ऐसे हमें सोचना नहीं चाहिए कि भगवान दुर्बल है, वो बहुत मेहनत से ये सब उठा रहे करके, ऐसे समझना होना चाहिए, उनको कुछ मेहनत नहीं होता, दुर्घटेशु कार्यशु करते हो, ये इनकी शक्तियाँ हैं, है ना। तो इसलिए हमें इन अचिंत्य शक्ति को समझना चाहिए। तो श्लोक क्रमांक 6, तो समझ में आ गया कैसे है, वो सब कुछ उनके ऊपर स्थित है लेकिन फिर भी वो अलग है, उनके अंदर स्थित नहीं, ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। यथाकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र वो महान यथा सर्वाणि भूतानि मत्सान्युपधारयः, जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों के मुझ में स्थित हो, प्राणियों को मुझ में स्थित जानो, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण बता रहे हैं कि कैसे सारी वस्तुएं जो उन्होंने सृष्टि किया उनको पालन कर रहे हैं, उनमें स्थित है वो, फिर भी वो अलग है, उनमें स्थित नहीं है, उसको एक उदाहरण से यहाँ पर दे रहे हैं। क्या उदाहरण दे रहे हैं, वायु कैसे गो महान, सर्वत्र गो महान, वायु सर्वत्र गो महान, सब जगह विद्यमान है वो आकाश में, यथाकाश स्थितो नित्यम, लेकिन आकाश के अंदर ही स्थित है वो, आकाश के परे तो नहीं है वायु, लेकिन सब जगह विद्यमान है आकाश में, वैसे ही सब कुछ भगवान के अंदर है लेकिन भगवान भी अंदर भी नहीं है, सभी चीज उनके अंदर भी नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर बता रहा है श्रील प्रभुपाद, तात्पर्य में कहते हैं कि गो महान, ये जो वायु है बहुत महान है, क्यों वायु महान है, क्योंकि सब कुछ वायु के गति के कारण सब कुछ गतिशील रहता है। यहाँ पर आप जानते हैं ना, आपको आपने सुना होगा कि ब्रह्मांड में जो अलग अलग ग्रह है वो लोग उनका क्या होता है, वो चलते हैं, घूमते हैं, अलग अलग जो ऐसे ग्रह नक्षत्र जो भी है वो जो घूमते हैं वो वायु के प्रभाव के कारण, उसका नाम भी भूल गए, प्रवाह, प्रवाह, ये प्रवाह नामक एक वायु होता है, उसके कारण ये सब कुछ घूमते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, किंतु भगवान उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि जिससे हमें समझने में सहायता मिले, आकाश हमारे कल्पना के लिए सबसे महान अभिव्यक्ति है और उस आकाश में वायु विराट जगत सबसे महान अभिव्यक्ति है, वायु की गति से प्रत्येक वस्तु की गति प्रभावित होती है। तो वायु से ग्रह घूमते, नक्षत्र घूमते हैं और वायु के कारण ही तरंग समुन्द्र में लहरें आते हैं, आप जानते हैं ना, समुन्द्र में लहरें आते हैं वायु के कारण, तो ऐसे पृथ्वी सब कुछ यह इस वायु की गति से ही चलता है। तो लेकिन वो वायु भी क्या है, आकाश के अंदर ही है और आकाश से अलग भी है, समझ में आ गए। तो वैसे ही ये पूरा भौतिक सृष्टि क्या है, भगवान के शक्ति के अंदर ही है लेकिन वो अलग भी है, या भगवान से अलग भी है, भगवान में ही स्थित है, जैसे वायु आकाश में ही स्थित है लेकिन वो भिन्न भी है, तो वैसे ही सब कुछ भगवान में ही स्थित है लेकिन भिन्न, तो ऐसे हमें समझना चाहिए। तो वैसे सब कुछ भगवान से ही गतिशील है। यहाँ पर वो तैत्तरीय उपनिषद से उल्लेख कर रहे हैं, बीशास्माद् वातः पवते बीशोदेति सूर्यः बीशास्माद् अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। तो ऐसे कहा गया, बीशास्माद् वातः पवते, जो वायु सबको घुमाता है इस भौतिक जगत में, वो भी कैसे घूमता है? भगवान की भय से घूमता है। बीशास्माद् वातः पवते बीशोदेति सूर्यः, सूर्य के प्रभाव में सबका सभी का जीवन को हरण करते हैं, सभी कार्यकलाप शुरू होता है, सभी कार्यकलाप बंद हो जाते हैं सूर्य के जो उदय से और अस्त से, है ना? सूर्य अस्त हो गया तो कार्यकलाप बंद हो जाते हैं ना। तो हम कृत्रिम रूप से कितने समय तक ये चलाएंगे, है ना? सब लोग हम सूर्य के ऊपर ही निर्भर हैं। तो बीशास्माद् वाता बीशोदेति सूर्यः, बीष्मास्माद् अग्निश्चंद्रश्च, अग्नि और चंद्रमा भी प्रकाश प्रदान करते हैं। किनके भय से? भगवान के भय से। मृत्युर्धावति पंचम, बीशास्माद् वाता बीशोदेति सूर्य अग्निश्चंद्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। इनके भय से ही मृत्यु सबको पीछा कर रहा है। ये भगवान है, सब कुछ उनके द्वारा ही होता है, फिर भी वो अलग है। तो ऐसे कहते हैं, उसके लिए कौन कौन है? सबके लिए करने के लिए अलग अलग व्यक्ति है जो नियमित करते हैं। ब्रह्मा जी सबको नियमित करते हैं, वायु अग्नि सो को, और तो या जो यमराज है वो सबके पीछे पड़ते हैं। तो ऐसे भगवान के, ये लोग भी भगवान के भय से ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन भगवान इन कार्यों से भी अलग है। तो यहाँ पर ब्रह्म संहिता में या बृहदारण्यक उपनिषद से भी प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी सूर्य चंद्रमसौ विद्रतौ तिष्ठत, एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गी द्वाव पृथिव्यौ विद्रतौ तिष्ठतः। तो कहते हैं भगवान की अध्यक्षता में परमादेश चंद्रमा सूर्य तथा अन्य विशाल लोग घूम रहे हैं। ब्रह्म संहिता में भी यक्षुरेषु सविता सकल ग्रहाणां राजा समस्त सुरमूर्तिरशेषतेजः यस्याद्या भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो सभी ग्रहों का जो राजा है, सविता मतलब जो सूरज, इनके नेत्र के समान है। समस्त सुरमूर्तिरशेषतेजः, जिनके अंदर बहुत ही मतलब असीमित तेज है, यस्याद नहीं भ्रमति संवृत काल चक्र, काल चक्र भी इनके आज्ञा से चलता है। वो क्या है? वो है गोविंद को मैं परम पुरुष है, उनको आदि पुरुष है, तो उनको मैं भजन करता हूँ, ऐसे ब्रह्मा जी कहते हैं। तो फिर आगे यहाँ पर प्रभुपाद जी भी ऐसे बहुत सारे अनेक प्रमाण प्राप्त होते हैं, और प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी हिलता नहीं है, ऐसे यहाँ पर उसको लेकर पहले भी पहले बोले थे ना इसको, पंचम अध्याय में एक तात्पर्य में, उनकी इच्छा के बिना कुछ भी हिलता नहीं है, फिर भी इन सब चीज़ों से भगवान अलग है। और अगले श्लोकों में भी व्याख्या की गई, मतलब मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कंतेय जगत भी परिवर्तते। जो चरा और अचर को सृष्टि करने वाले भौतिक प्रकृति मेरे अध्यक्षता में कार्य करती है। ऐसे तो श्लोक क्रमांक, मतलब ये सब चीज क्यों बता रहे भगवान? उनकी महत्व को बता रहे हैं। इसको सुन के सुन के सुन के सुन के हम लोग इस भक्ति मार्ग में स्थित हो जाते हैं। स्थिर हो जाते हैं, है ना, भगवान की उनके अंदर श्रद्धा आ जाता है ना उनके ये सब चीजों को सुनने से। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पाक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत होने पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। पिछले अध्याय में भी भगवान सृष्टि और प्रलय के बारे में बताया ना, याद है आपको? कल भी हम चर्चा कर रहे थे, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, वो प्रलय के और सृष्टि का कब होता है? वो ब्रह्मा जी के दिन और रात के समय में होता है। लेकिन यहां पर भी भगवान सृष्टि और प्रलय के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये सृष्टि प्रलय क्या है? ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, ये आरंभ में होता है और अंत में होता है। और पिछले कल हम ब्रह्मा जी के जीवन को हम लोगों ने क्या बताया, वी कैलकुलेटेड गणना आया, हम लोग ब्रह्मा जी के आयु को गणना किया कितना लंबा है ना वो। तो यहां पर बोलते हैं भगवान कि अंत, कल्प के अंत, कल्प शब्द, कल हम लोग कल्प के बारे में बोलते हैं। ब्रह्मा जी का दिन को भी कल्प कहते हैं, ब्रह्मा जी के जीवन को भी कल्प कहते हैं। तो कल्प, कल्प के अंत पर सारे प्राणी मेरे प्रकृति में प्रवेश करते हैं। कहाँ प्रवेश करते हैं वो, किसी को पता है? यस्य निश्वसितः, क्या है वो श्लोक? यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोम पूरा कूप आधार शक्तिमवलंब्य परास्म मूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वो उनके एक रूप को बता रहे, महाविष्णु कहते हैं उनको, कारणदक्षाय विष्णु। वो कारणव जले, यह कारणार्णव जले भजति स्म योग निद्रामनंत जगदंड सरोम कूप। तो वो योग निद्रा में वहां पर लेटे हुए हैं, वो कारण जल में। इनके रोम रोम से क्या हो जाते हैं, सभी ये भौतिक जगत में जो ब्रह्मांड है वो निकलते हैं और सभी देवी देवता भी इनके रोम रोम से निकलते हैं। तो और उसके बाद के श्लोक में भी, यस्य कनिष्वति स कालमतावलंब्य जीवन्ति लोम विलजा जगदंडनाथ विष्णुर महान सयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कहते कि जब वो श्वास छोड़ते हैं, यस्य कनिष्वसित कालमतावलंब्य, और श्वास अंदर लेते हैं तो ब्रह्मा जी के ये पूरा जीवन कट जाता है, उतना लंबा श्वास लेते हैं वो, उनका श्वास इतना लंबा रहता है। और श्वास अंदर बाहर लेने से क्या हो जाता है, पूरा सृष्टि और प्रलय हो जाता है। वो श्वास छोड़ देते हैं तो सब कुछ सृष्टि हो जाता है, सभी देव देवताओं का भी सृष्टि हो जाता है। और अंदर ले लिया होता है तो क्या हो जाता है, वो सब कुछ अंदर चला जाता है। और ये महाविष्णु क्या है, भगवान कृष्ण के एक विस्तार के विस्तार के विस्तार है, बस कला विशेष एक विस्तार है उनका। ये महाविष्णु इतना महान है तो भगवान कृष्ण कितने महान होंगे, है ना। तो ये श्लोक में वो कह रहे हैं, ये सब क्यों बोल रहे हैं, उनकी महानता को बोल रहे भगवान कृष्ण। कोई ऐसे उस समय हम लोग चर्चा करो, कोई ऐसे मूर्ख लोग भी होते हैं, क्यों भगवान इतना अहंकारी अपने बारे में बोल रहे करके, है ना, ऐसे लोग बोलते हैं। भगवान अहंकारी नहीं, बहुत नम्र भी है। वो क्या बनते हैं भगवान, वो सारथी बनते हैं अर्जुन का। सारथी बनना क्षत्रिय के लिए वो इतना वो काम वो नहीं होता है। तो इससे इसको सुनने से भगवान के द्वारा ये सुनने से क्या हो जाता है, हमें लाभ होता है, इसलिए भगवान बता रहे कृपा करके हमें उनके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाता है, भक्ति करने के लिए प्रेरित प्रेरणा मिलता है। उनका माँ भगवत्ता क्या है हम लोग समझ सकते हैं। ऐसे ये लोग झगड़ा कर रहे हैं साईं बाबा का पूजा नहीं करना चाहिए, उसका पूजा, पहले भगवत्ता क्या है समझो, भगवान क्या होते हैं समझो, बाद में कौन भगवान है या उसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। ऐसा व्यक्ति भगवान है जिनके अंदर सब कुछ। हम लोग जब श्वास लेते हैं तो सिर्फ एक मच्छर अंदर बाहर जाके आके ये श्वास लेते हैं तो सब कुछ प्रवेश करता है, सब कुछ बाहर जाता है, ना? तो ये है भगवान, है ना, अंतर है ना बहुत। तो ऐसे यहाँ पर बताते हैं, ऐसे 100 वर्ष के बाद जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है। पुनः वह जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको हम बहुश्याम, यद्यपि अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाऊँगा। मतलब जीव उनके शरीर में गए होते हैं फिर वो वापस आ जाते हैं, एको बहुश्याम जीवों का सृष्टि हो जाता है फिर से। तो यह वैदिक सूक्ति है छांदोग्य उपनिषद। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः गठित हो जाती है, ये उनकी महानता है। प्रकृतिम स्वाम वश्चाभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम एक कृष्णम अवशम प्रकृते वशात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है, होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो हम प्रकृति शाश्वत है, हम लोग चर्चा कर रहे थे चार चीज़ों में, तो पांच चीज़ों में चार शाश्वत है, उसमें एक है प्रकृति। क्यों वो शाश्वत है? क्योंकि वो बार बार उसका सृष्टि होता है, बार बार उसका पालन और विनाश होता है, उसके रूप का सृष्टि पालन और विनाश होता है, लेकिन वो प्रकृति क्योंकि बार बार सृष्टि पालन होता है, ये चक्र चलता रहता है, इसलिए वो शाश्वत है। तो फिर यहाँ पर प्रॉपर तात्पर्य में ये तीन विष्णुओं के बारे में होता है, कैसे सृष्टि होता है। संपूर्ण विराट मेरे अधीन है, मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता है। तो यहाँ पर वो बोल रहे विसृजामि पुनः भूत ग्रामामि, मेरी इच्छा से वो प्रकट होता है, ऐसे वो कहते हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कैसे महातत्व का सृष्टि महाविष्णु करते हैं, महाविष्णु महातत्व को सृष्टि करने के बाद उसमें प्रवेश करते हैं और उनके रोम रोम से सभी ब्रह्मांड निकलते हैं और ब्रह्मांड में भी वो प्रवेश करते हैं, वो दूसरा विष्णु है, गर्भोदक्ष है विष्णु, और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी निकलते हैं, नाभि से जो पद्म निकलता है उसको पद्मजय कहते हैं, और वो ये ब्रह्मांड के अंदर का जो सृष्टि है वो करते हैं, इसलिए उनको सृष्टिकर्ता कह रहे हैं। अंदर के जो 14 भुवन होते हैं और जीवों को जो रूप है उसका भी सृष्टि करते हैं, वो डिजाइनर है, इंजीनियर है और डिजाइनर है। भगवान के भगवान से जो शक्ति प्राप्त करके उनसे जो वस्तुएं प्राप्त करके इंग्रेडिएंट्स प्राप्त करके क्या करते हैं, वो ऐसे सृष्टि करते हैं। तो ये ब्रह्मा जी है। फिर उसके बाद में तीसरा विष्णु सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं, या वो श्वेत द्वीप में ब्रह्मांड के अंदर जो एक आध्यात्मिक ग्रह है उसमें वो निवास करते हैं, और जब भी देवी देवताएं कठिनाई में रहते हैं तो उनके पास जाते हैं और वो क्या कहते हैं, वो अवतार लूंगा मैं, ऐसे संदेश देते हैं, आप सब लोग भी प्रकट हो जाओ ऐसे। तो ये सभी अवतार इनसे आते हैं। तीसरा विष्णु क्षीरोदक्षाय विष्णु क्षीर सागर में निवास करते हैं। तो प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहां तक या और भूत ग्रामम इमं कृष्णम अवशम अवशम प्रकृतेर वशात, यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होते हैं और मेरी इच्छा से अंत में विनष्ट होते हैं। सो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं जहाँ तक कि जीवात्माओं का संबंध है वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में ग्रहण करते हैं। इस प्रकार भौतिक जगत कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। सो इसका अर्थ है जब सभी सभी जीवों को एक ही साथ सृष्टि किया गया, ऐसा नहीं कि वो विकास के द्वारा, जैसे हमारा डार्विन जी बोलते हैं कि विकास के द्वारा एक एक करके ऐसे जीव राशि सृष्टि नहीं हुआ, ऐसे एक ही साथ में उनका सृष्टि होता है। क्यों होता है ऐसे? पूर्व सृष्टि में उन्होंने जो इच्छाएं की थी जिसके कारण वो इस भौतिक जगत को छोड़कर वापिस भगवद्धाम नहीं गए, तो उन इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए फिर से इस जगत में प्रकट हो जाते हैं, उनका सृष्टि हो जाता है। अलग अलग इच्छा उनके चेतना के अनुसार अलग अलग जीवों का सृष्टि हो जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि एक के बाद लंबे समय के विकास के द्वारा, एवोल्यूशन के द्वारा तो जीवों का सृष्टि हो गया और जीवों में, और इसके इसमें अलग अलग चीज़ है। पहला, ये जो धारणा है वो चांस के आधार पर है। चांस मतलब अपने आप हो जाता है, लेकिन उसको वो कहते हैं वेरिएशन एंड क्या बोलते हैं म्यूटे वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। सो वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन, धीरे 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 जिस नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या होता है कि जिस जीव के अंदर प्रकृति के संपर्क में वो रहने के लिए योग्यता होता है या शक्ति होता है, अलग अलग समय पर कुछ प्राकृतिक बदलाव के कारण वो जीव क्या जीवों का जीव राशि का नाश हो जाता है। अलग अलग योनियों का जीव योनियों का नाश होता है, लेकिन जिस जीव में ये जो शक्ति रहता है इन नैसर्गिक स्थितियों को साथ झेलने के लिए, समझ में आ गए, झेलना झेलने के लिए उनके अंदर शक्ति रहता है, वो जीव आगे बढ़ते हैं। उसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं इसको, या इस जो अस्तित्व के लिए जो संघर्ष को स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कहते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि इसको सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। भगवद्गीता में स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कर्षति कहते हैं। तो जो इसको फिट, जिसके अंदर शक्ति है वो अस्तित्व में रह जाते हैं, और अन्य जीव क्या है वो क्या हो जाते हैं, तो उनका नाश हो जाता है, वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। और वेरिएशन, दूसरा उसका अर्थ, दूसरा विभाग डार्विन के सिद्धांत के दूसरा विभाग में क्या है, जो जीव अस्तित्व में रहते हैं वो धीरे 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 क्या होते हैं, प्रकृति को अनुसार एडाप्टेबिलिटी, वो अपने आप को बदलते हैं। तो बदलते 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 क्या हो गए, ऐसे सभी योनियों का सृष्टि हो गया और मनुष्य बन गए, ऐसे कहते हैं। तो मनुष्य क्या है, पूर्ण विकसित जीव माना जाता है ऐसे। लेकिन इसके लिए क्या आधार है, ऐसा आप कह रहे हैं, एक कहानी बता रहे हो आप, सृष्टि का कहानी बता रहे हो, इसका क्या आधार है? सिर्फ क्योंकि डार्विन जी बोलते हैं हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, उसका कुछ आधार होना चाहिए ना, है कि नहीं? बहुत लोग अपना अपना कुछ बनाते हैं, कहानी बनाते हैं, और जो व्यक्ति ऐसे वर्ड जगलरी में बहुत दक्ष रहता है, वर्ड जगलरी में जानते हैं तो शब्द जाल में, शब्द जालम महारण्यम ये शब्द जाल एक महाअरण्य है ये। वो जो दक्ष रहते हैं वो लोग, वो उनका जो मत है वो बहुत प्रभावित हो जाता है। यही आधार, शब्द जाल ही इसका आधार है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, वेरिएशन, म्यूटेशन, दैट जोन, जिस जोन, जूम जूम जूम, ये सब हमें स्वीकार करना है। क्या आधार है इसका? कोई कुछ आधार नहीं, सिर्फ उनका कल्पना है बस। सब लोग बहुत सारे लोग कल्पना करते हैं, बहुत सारे कवि लोग बहुत कल्पना करके बहुत सारे कुछ लिखते हैं। क्या वो वास्तविकता होता है? इसके लिए कुछ आधार नहीं है तो सिर्फ, लेकिन मूर्ख लोग, उनको कुछ इसके परे कुछ पता नहीं है, लोग इसको ही स्वीकार करते हैं, है ना। भौतिकवादी लोग भौतिक भोग में लिप्त है क्योंकि उनके उनको कुछ उसके परे कुछ पता नहीं है, आनंद कुछ पता है। ऐसे ही ये लोग इसको ऐसे यू नो मत को धारण धारणाओं को स्वीकार करते हैं, उनको सीखते हैं, सिखाते हैं, पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हमें उनको भी स्वीकार करना होता है। तो ये लोग मतलब ये लोग ऐसे स्वीकार करते हैं, इसका कुछ आधार नहीं है। ऐसा व्यक्ति ऐसे कुछ बैठ के ऐसे कुछ कभी यू नो करोड़ों करोड़ों साल पहले कुछ हुआ है उसको कैसे कल्पना कर सकते हैं? कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं? क्या आधार है? कुछ नहीं। हाँ, फॉसिल, फॉसिल क्या आधार है? हमारे पास 992 पेज का फॉसिल रिकॉर्ड है जो डार्विन को जो मत है उसको विरुद्ध, उसके विरुद्ध है जो फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल रिकॉर्ड आप जानते हैं, फॉसिल मतलब जो अवयव बोलते हैं ना, जीवा जीवाश्मी, समझ में आएगा। तो जो डार्विन के मत को सिद्ध करने के लिए जो वो प्रमाण है ऐसे फॉसिल का, उससे भी ज्यादा जो है उसके विरुद्ध है। ये लोग जानबूझकर उसको क्या कर दिया, उसको अलग कर दिया, उसको नकार उसको। ये लोग अपना मत के अनुसार क्या करते हैं, जो प्रमाण के अनुसार हमें मत को बदलना चाहिए, मत होना चाहिए। ये लोग मत के अनुसार ये प्रमाण को बदल रहे हैं, ये बड़ा खतरनाक चीटिंग है। तो दिस इज ग्रेट चीटिंग है ना। तो प्रमाण कभी नहीं बदलता है, लेकिन वास्तव में ये प्रमाण भी बदलता है। क्या है ये सब, इसका इसके आधार पर क्या हम लोग क्या समझ सकते हैं उसको? ये मूर्खता है बस। विभिन्न जीव योनियों को कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि वे योनियां क्रमशः विकसित होती है, सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती है। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो इच्छाएं थी वे पुनः प्रकट होती है। इसका स्पष्ट संकेत अवश्यम शब्द से मिलता है। हम वो ढूंढ रहे थे कौन सा शब्द है, क्यों ये प्रभुपाद जी निकले, कृष्णम अवश्यम। तो अवश्यम मतलब स्वतः या आरंभ से, ऐसे होता है। जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता, पूर्व सृष्टि में जो जिस जिस अवस्था में थे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाना नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते हैं। दूसरे शब्दों में जो सृष्टि पालन और विनाश का जो कर्म है, वो भी कर्म है ना, वो कर्म से वो बंधते नहीं है भगवान, है तो ये सब अचिंत्य चीज है ना। ये कैसे होता है सब, कितना महान चीज है ना, ये सब समझना ही बहुत ही अद्भुत लगता है। तो एक और चीज, भारत के जो डार्विन के अनुयायी हैं भारत में भी ना, जो ये लोग वो लोग कहते हैं कि ये दशावतार भी क्या है, ये डार्विन को जो सिद्ध करता है ऐसे कहते हैं। पहले है ना मछली जलचर, फिर उसके बाद में जो वराह होता कच्छप, हाँ कच्छप है ना, बहुत MPBM मतलब वो पृथ्वी के ऊपर भी रहता है जल में भी रहता है, फिर बाद में वराह होता है ना, ऐसे वो लोग कहते हैं। कैसे उसको खंडन करेंगे आप बताइए, शैलेंद्र बताओ कैसे खंडन करेंगे। कैसे खंडन करेंगे रज गोपाल जी, प्रचारक, युवा प्रचारक, प्रयास करेंगे।
आप जो टाइमिंग देते हैं, जो टाइमिंग आपने से किया है, आप इस टाइमिंग से वो टाइमिंग मैच नहीं होता, तो करोड़ों वर्ष पहले सतयुग में जो लाख वर्ष का इतिहास है, आप लोग का टाइमिंग बस 10,000 का है, आपका टाइमिंग मैच नहीं हो रहा है।
ठीक है, लेकिन फिर भी वो पॉइंट है, सिद्ध करता है। आप देखो ऐसे हो रहा है ना, ऐसे कहते हैं। हाँ ठीक है, शास्त्र को स्वीकार करेंगे। शास्त्र स्वीकार करने से क्या होता है, वही हम शास्त्र के आधार पर ऐसे उसको सिंबॉलिक मीनिंग ले रहे हैं हम लोग। शास्त्र के आधार पर ही हम लोग सिंबॉलिक मीनिंग ले रहे हैं, वो नहीं बताना चाहिए हम लोगों को, वो सब बहुत दूर की बात है। और उसको अभी देखो क्या है, देखिए पहला अवतार था क्या है, मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार क्यों हुआ, प्रलय होने के बाद, प्रलय होने वाला था और सब जगह पानी आने वाला था, इसलिए भगवान किनको रक्षा करना चाहते थे, सत्यव्रत महाराज को और सप्त ऋषियों को और सो वनस्पति है उनको रक्षा करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है, वनस्पति है, सप्त ऋषि है, सत्यव्रत महाराज है, मनुष्य है, सब लोग है ना। हाँ वो दूसरा है, पहला चीज है कि ये सब लोग विद्यमान है, वो सत्यव्रत महाराज एक मनुष्य राजा है, उनको बचाने के लिए मत्स्य अवतार हुआ। ऐसा नहीं कि तब वो सिर्फ मत्स्य थे, सिर्फ मत्स्य उसके बाद में सिर्फ कच्छप बन गए, ऐसा नहीं है कि नहीं। और दूसरा चीज है कि चाहे वो प्रलय क्या क्या बता रहे थे, सृष्टि के शुरुआत में जलचर थे, सब पानी में जीव थे, फिर वो उस पानी से वो जंप मार गए आउट साइड, जंप किया उन्होंने बाहर, ऐसा वो कहते हैं, घूमने में लगे ऐसे कहते हैं। तो लेकिन यहाँ पर सृष्टि के अंत का जो जो ये अवतार के बारे में आप कह रहे हो कि यह अवतार भी ऐसे सिद्ध करता है, लेकिन अवतार तो सृष्टि के अंत में आया है, लेकिन वो सृष्टि का अंत नहीं था, वो बीच में एक विशेष प्रलय हुआ, ब्रह्मा जी को नींद आ गया तो प्रलय हुआ, छठे मनवंतर में, चाक्षस मनु के मनवंतर में। थोड़ा वो भी नींद करते हैं ना, जैसे आप क्लास क्लास में बैठ के नींद करते हैं, उनको नींद आ जाता है। वो नींद करता है तो क्या हो जाता है, देखे प्रलय हो जाता है, ब्रह्मा जी नींद करता है तो हम लोग नींद करते हैं तो क्या होगा? ठीक है, 1:15 हो गए। तो यहाँ पर थे ना प्रकृति सोम हवशम शब्द से आता है, हवशम मतलब सृष्टि के आरंभ से ये सब क्रियाशील स्वतः क्रियाशील हो जाते हैं सभी जीव। नचमां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवदासीनम् असक्तम् तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूं, ऐसे कहते हैं। ये सब चीज क्यों बोल रहे भगवान? मैं प्रकृति की जो क्रिया कर्म सृष्टि करने का, पालन करने का और विनाश करने का जो कर्म है उससे मैं मुझे मुझे बाधित नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है विशेष करके जो कर्म मीमांसक वगैरह, वो लोग क्या करते हैं, भगवान भी कर्म के अधीन है, वो भी सृष्टि के कर्म करते हैं तो उनको भी कर्म के निदान वो फल मिलता है, तो या कर्म में बंध जाते हैं ऐसे वो कहते हैं, या उनको सृष्टि करना ही पड़ेगा ऐसे वो कहते हैं, जीवों का कर्म होने के कारण। तो ऐसे बहुत सारा कुछ बोलते हैं ये, इसलिए ये सब चीज़ भगवान बता रहे हैं। ऐसे लगता है, लग सकता है ना, मैं ये सब क्यों बोलना चाहिए, मैं उदासीन हूँ या इस ये मुझसे कुछ लेना देना नहीं है भौतिक सृष्टि का और पालन का। तो आधुनिक जमाने में ये सब चीज़ नहीं है, क्योंकि कोई भगवान के बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं। भगवान क्या चीज़ है उसके बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, वाद विवाद ही नहीं करते उसके बारे में, हम सेक्युलर है, सेक्युलर बोल देते हैं, पहले ही जरूरत नहीं है सब चीज़ है, ऐसा कहते हैं। सेक्युलर बनना मतलब बड़ा एक एक पशु बनना, धर्मी नहीं ना पशु भी समान है ना, सेक्युलरिज्म मतलब बहुत पशु प्रति है, पशु समाज, पशु ऐसे जिज्ञासा नहीं करते, चर्चा नहीं करते, जिज्ञासा नहीं करते पशु, उनको कोई कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ वो आहार निद्रा भय मैथुन से ही कुछ उनको कुछ ना? तो ये पशु समाज है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे, तो ये श्लोक उल्लेख कर रहे जो उतना मतलब बहुत ही प्रचलित नहीं है। आत्मारण्य तस्ति प्रकृत्या स समागम, तो वो आत्मा रामस्य आनंद चिन्मय रस, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, वो ऐसे कार्यों में आध्यात्मिक जगत के बारे में चर्चा कर रहे थे, कब लोग भगवान आनंद चिन्मय रस ऐसे लीलाओं में हमेशा व्यस्त रहते हैं, ये भौतिक जगत के भौतिक जगत भौतिक कार्यकलापों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो कैसे बोलते, मैं उदासीन वद आसीनम असक्तम तेषु विद्यते, तो मैं उदासीन वद आसीनम, आसीन आसीन क्या है, बैठना उसका अर्थ है, आसन बोलते हैं ना, आसन शब्द ये सभी एक ही संस्कृत शब्द से आते हैं। यहाँ पर उदाहरण क्या दे रहे प्रभुपाद, जैसे एक वो न्यायाधीश बैठे रहते हैं न्यायालय में, वो पूरी तरह से उदासीन होकर बैठे रहते हैं, उनसे दोनों पक्ष में जो युद्ध यू नो जो वाद विवाद चल रहा है उनसे कुछ लेना देना नहीं, तो ऐसे उदासीन बैठे रहते हैं। तो किसी को वो क्या करते हैं, दंड देते हैं, किसी को उपहार देते हैं, इनको इतना उपहार मिलना चाहिए ऐसे वो आदेश देते हैं, लेकिन वो दोनों पक्षपात नहीं करते, वो पूरी तरह से उदासीन है भौतिक कार्यकलापों से। तो ऐसे ही भगवान इस भौतिक जगत से भौतिक कार्यकलापों से उदासीन रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। सो ये वेदांत सूत्र का भी श्लोक पहले, ये इसका हम लोग चलते अध्याय में चर्चा किया, जब कर्म के बारे में कैसे कर्म भगवान को बंधता, वर्णाश्रम के संबंध में वहाँ पर चौथे अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। वैषम्य नैर्ग्रण्य नैर्ग्रण्यन्येन, और पांचवें अध्याय में भी वर्णन आता है उसको। भगवान बोलते हैं ना, मुझे कुछ लेना देना, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो जीवों का ही अज्ञान के कारण इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के कर्मों में वो लगे रहते हैं, उनको कर्म का फल मिलता है। अज्ञानेनावृतम, ऐसे बोलते हैं ना भगवान। तो ऐसे अलग, लेकिन अंतर क्या है, पहले जो वर्णन हुआ है, अभी जो वर्णन हुआ है, सिर्फ अलग अलग स्तर में ये सब वर्णन हो रहा है, ये सृष्टि के स्तर पर हो रहा है। कि तो आगे जाके प्रभुपाद एक और उदाहरण देंगे, क्या उदाहरण देते हैं वो अगला श्लोक में आएगा, अगला श्लोक में चर्चा करेंगे। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेया जगद्वी परिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरे शक्तियों से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजती और विनष्ट होता रहता है। तो मयाध्यक्षन, मेरे अध्यक्षता के मार्गदर्शन में कहते हैं, ये सृष्टि के पीछे भगवान है। तो एक पहले, अभी बहुत सारे विभाग बन गए उसमें, पहले एक विभाग था उसको नेचुरलिज्म कहते हैं, नेचुरलिज्म, सो या रिडक्शनलिज्म, वो फिजिक्स में आता है, फिजिक्स और मैथमेटिक्स में आता है रिडक्शनलिज्म। सो ये न्यूटन के समय से, केपलर और न्यूटन, केपलर के बाद न्यूटन के समय से आरंभ हो गया है। सभी जो सृष्टि में या प्रकृति में जो भी कार्यकलाप हो रहे हैं, जो भी नियम है, वो सब कुछ क्या है, वो अपने आप में पूर्ण है, ऐसे कहता है। इसके परे कुछ नहीं है। और सब सभी हम लोग ऐसे इन नियमों के द्वारा सभी सृष्टि को हम लोग समझ सकते हैं। वो सृष्टि को क्या कर दिया उन्होंने, एक मैथमेटिकल फॉर्मूलास, जो गणित के जो कुछ क्या बोलते हैं उसको, सूत्र के रूप में उसको वर्णन करना आरंभ कर दिया होगा। तो ये न्यूटन का भगवान, न्यूटन का भगवान क्या है, ज्योमेट्री। तो और आइंस्टीन का भगवान क्या है, स्पेस टाइम कर्व। तो अंत में सब कुछ क्या है, एक गणित के कुछ सूत्र, अंत में यही सृष्टि है। सृष्टि मतलब सिर्फ गणित के कुछ सूत्र है बस। लेकिन सूत्र, गणित के सूत्र मतलब ये सब चीजों को जब हम लोग नियम बोलते हैं, कुछ सूत्र या सूत्र के द्वारा हम लोग नियमों को समझ रहे हैं। प्रकृति के नियम जब बोलते हैं तो हम लोग नेचुरल लॉ, फिजिकल लॉज, ऐसे अंग्रेजी ना वैज्ञानिक भाषा में भी आता है। जब हम लोग ऐसे नैसर्गिक प्राकृतिक नियम के बारे में बोलते हैं तो नियम को बनाने वाला कोई होना चाहिए। ऐसे ही नियम ऐसे प्रकट नहीं होते, वो अज्ञान है। ऐसे ही प्रकट होते हैं वो नियम के अज्ञान है बस। समझ में आ गया है ना। जैसे कोई व्यक्ति 100 बार एक सिक्के को ऊपर फेंकता है, तो 100 बार सिक्के को ऊपर फेंकने के बाद उसको क्या फल मिल जाता है, 50 बार हेड, क्या बोलते हैं उसको, हेड एंड टेल, 50 बार चित्त, 50 बार पट मिल जाते हैं, है ना, ऐसे वो होता है। लेकिन अगले बार 101 बार जब वो ऊपर फेंकता है तो ऐसे बोल सकता है, ऐसे बोला जाता है कभी कभी ऐसे, है ना, चर्चा करते वक्त शायद या बाय चांस क्या होगा, वो चित्त आया हो सकता है, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं। लेकिन ऐसे होता है, चांस होता है वो, बाय चांस होता है वो। जो लोग प्रकृति के नियमों को जानते हैं वो लोगों को पता है कि ये चांस क्या है या अज्ञान है। क्यों? वो जब हम लोग उसको ऊपर फेंकते हैं, जितना हम लोग शक्ति लगाते हैं, और वो सिक्के का जो वेट है, बार है, बार है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है, और जो फ्रिक्शन है ना, वो वातावरण का जो एयर फ्रिक्शन ऑफ द एयर, तो ये सब के आधार पर ये चित्त या पट होता है। ऐसे ही अपने आप कभी वो बाय चांस चित्त और पट नहीं होता है। इसलिए प्रकृति के जो नियम है अपने बाय चांस नहीं हुए, सब कुछ नियम और बहुत ही एक ढांचा के, व्हाट इज द, ढंग से चलता है, ना प्रिसाइज वे, ना सिस्टमेटिक वे। तो उसका अर्थ क्या होता है, कोई इसके पीछे नियम नियम बनाने वाले हैं, नियंता है वो अर्थ होता है। और ऐसे सृष्टि बाय चांस को हम लोग सृष्टि को लागू नहीं कर सकते। बाय चांस क्या है, कैसे हम लोग बोलते हैं उसको, एक भाषा में कैसे हम लोग समझेंगे उसको, एक ऐसा फल को वर्णन करता है जो बार बार, जिसको एक ऐसे प्रक्रिया के फल को वर्णन करता है जो प्रक्रिया बार बार किए जाते हैं, किए जाने के बाद एक समय पर हम लोग ऐसे व्यक्त करते हैं कि शायद ये क्या होगा, चित होगा या पट होगा, उसको चांस कहते हैं। चांस इज अ रिजल्ट ऑफ ए रिपीटेड फिनोमिना, रिजल्ट ऑफ द रिपीटेड फेनोमिना टेकिंग प्लेस। लेकिन सृष्टि को इसको लागू नहीं किया जा सकता। क्यों? सृष्टि तो बार बार नहीं होता है, शायद ये ऐसे हो गया होगा, ऐसे हम लोग बोलने के लिए, वो बार बार तो नहीं होता है। तो इसलिए ये चांस क्या है, ये अज्ञान है। ये बहुत ही प्रसिद्ध हुआ है, चांस थ्योरी जो है वैज्ञानिक जगत में बहुत प्रसिद्ध हो गया है। एक वैज्ञानिक था जैक्वेस मोनॉड, मोनॉड करके, तो उसने वो एक ग्रंथ लिखा द चांस करके, तो उसने बहुत प्रचार किया उसका। ये तो ऐसे आधुनिक इतिहास में, हम वैज्ञानिक इतिहास में देखेंगे तो ऐसे मिलता है, लेकिन ये तो पहले भी है, पहले भी बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए इतिहास में। ऐसा आधुनिक जगत में ऐसा ऐसा कोई भी मत या धारणा नहीं है जो पहले नहीं था। पहले भी इसके बारे में वाद विवाद, शास्त्रों में वाद विवाद हुआ है। इसलिए भगवान आगे है 16वें अध्याय में बताएंगे, क्या है, असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगदाहुरनीश्वर परस्परम संभूतम किम अन्यत काम हेतु कम। इस श्लोक में सभी जो नास्तिक दर्शन है सब कुछ बता दिया और उसको खंडन करते हैं। ये लोग असुर लोग ऐसे कहते हैं, ये जगत सत्य नहीं है, ये अनरियल, इट्स नॉट रियल, अप्रतिष्ठम, इसका कोई आधार नहीं है, जगदाहु रनीश्वरम, इसका कोई नियंता नहीं है, अपरस्पर संभूतम, ये भौतिक तत्वों के संयोजन से ये सृष्टि हुआ है, जीव का सृष्टि और पूरा ब्रह्मांड का भी सृष्टि ऐसे हुआ है। ऐसे ये लोग नास्तिक असुर लोग सोचते हैं, ये असुरों का दर्शन है सब चीज। लेकिन यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सयते सचराचर, मेरी अध्यक्षता के, इसके पहले भी हम लोगों ने देखा विषास्माद् वातापते विषो देति चंद्रमा, प्रभुपाद जी भूमिका में, भगवद्गीता के भूमिका में वर्णन करते हैं कि क्या होता है, ऐसे सोचना कि इस प्रकृति के परे कोई नियंता नहीं है, ये बचपना है, बोलते चाइल्डिशनेस या मूर्खता है, बोलते हैं। वो उदाहरण देते हैं, अभी ऑटोमोबाइल, पहले जमाने में क्या होता था, बैल, बैलगाड़ी या घोड़ा खींच के लेकर जाते थे, अभी ऑटोमोबाइल बन गए, ऑटोमोबाइल वो ऑटोमेटिकली चल रहा है ऐसे, कोई ऐसे अज्ञानी व्यक्ति सोच सकता है, लेकिन नहीं, या ऑटोमेटिकली वो सृष्टि हो गया, वो ऐसा कोई सोच सकता है? यह अज्ञान है, उसके पीछे कोई है, वो कोई चला रहा है उसको, उसके लिए बहुत सारे डिजाइन का जरूरत होता है, है ना? ये प्रकृति भी ऐसे ही चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, इसमें ऐसे उत्पात नहीं हो रहे, कोई नियंता। लेकिन ये लोगों को भगवान के शक्तियों के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए वो कल्पनाएं नहीं कर पाते कि ऐसा व्यक्ति है जो इसको सब नियंत्रण कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि भगवान मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, हमसे हमारे से भी श्रेष्ठ व्यक्ति कैसे हो सकता है? नियंता मतलब वो लोग सोचेंगे हमारे जैसे ही, वो शक्तियों का जानकारी ना होने के कारण वो उनके मन में ऐसा एक भ्रम सृष्टि हो जाता है कि भगवान हमारे जैसे एक व्यक्ति है, तो हमारे जैसे हम नहीं कर सकते, ये नियंत्रण नहीं कर सकते, इसलिए ऐसे कोई व्यक्ति हो नहीं सकते है, ये साइकोलॉजी है, ये मनोधारणा है उनके पीछे, मनोकल्पना है। समझ में आ गया? भगवान के अचिंत्य शक्तियों का जानकारी न होने के कारण मन में एक ऐसा भ्रम सृष्टि हो जाता है कि भगवान हमारे में से एक है, क्योंकि हम नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, इसलिए कोई नियंता नहीं है, ये निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। इसलिए मुझको पहले समझो कि भगवान के पास कैसे अचिंत्य शक्तियां है करके, इसलिए ये सब चीज वर्णन आता है भगवद गीता। तो भगवान इसके पीछे है, तो ये रिडक्शनलिज्म है, और नेचुरलिज्म भी क्या है, वो भी ऐसे ही है, जीवों के सृष्टि, सृष्टि क्या है, सृष्टि के पीछे कोई व्यक्ति नहीं है, कोई बुद्धि नहीं है, वो अपने आप बाय वेरिएशन एंड नेचुरल सिलेक्शन क्या हो गए, वो जीवों का सृष्टि हो गया ऐसे। तो लेकिन हम लोग देखते हैं कि सभी जीवों में विशेष गुण होता है, और इसको करने के लिए क्या होता है, आजकल एक और मूवमेंट चल रहा है, उसको इंटेलिजेंट डिजाइन मूवमेंट कहते हैं। वो लोग ये डार्विन के सिद्धांत को खंडन कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर सृष्टि में हम लोग बहुत सारे ऐसे डिजाइन है जिसको बुद्धि के द्वारा, बुद्धि के बिना नहीं हो सकता, ऐसे डिजाइन नहीं हो सकता, इसलिए इसका कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने इसको डिजाइन किया गया है ऐसे। सो इसको इररिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटीज भी बोलते हैं, लेकिन ये लोग उसको ऐसे परिभाषा नहीं देते, इनका एक गलती है एक्चुअली। इंटेलिजेंट डिजाइन वाले क्या बोलते हैं, क्या करते हैं वो लोग, उसको मापने के लिए, डिजाइन को मापने के लिए वो लोग दो चीजों के बीच में अंतर को माप के वो बताते हैं कि इंटेलिजेंट डिजाइन है करके। समझ क्या है, उदाहरण तौर पर वो अस्पष्ट हो जाएगा। ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्क्रैबल पीसेस जानते हैं, स्क्रैबल जानते हैं आप लोग, पहले वो खेलते रहते हैं ना, उसको टेबल के ऊपर ऐसे कुछ ये 64 ऐसे वो अक्षरों का ये होता है, उनको फेंक दिया जाता है। फेंकने से क्या होता है, एक ऐसे मीनिंगफुल वाक्य, अर्थमय वाक्य के रूप में वो प्रकट नहीं होते हैं, लेकिन एक अर्थमय वाक्य बनाने के लिए हमें उसको बुद्धि लगाना पड़ेगा। इन दोनों के बीच के जो अंतर है, उसको ही अंतर को समझना ही उसको ही इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं। एक्चुअली ये जो परिभाषा है परिपूर्ण नहीं है, इसलिए ये लोग भी अंत में फेल होने वाला है। क्यों परिपूर्ण नहीं है ये, नहीं वो क्या कहते हैं उसको, वो इसको एक्सप्लेन, परिभाषा देना पड़ता है ना इसको, ये उदाहरण है, उसको परिभाषा कैसे, उदाहरण परिभाषा को समझने के लिए दिया जाता है, इसलिए हम पहले उदाहरण दिया आपको। परिभाषा क्या देते हैं, इंटेलिजेंट डिजाइन मीन्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल कॉजेस एंड इंटेलिजेंट कॉजेस, ऐसे हो गए। अब बताइए इसमें क्या कमी है। जो नैसर्गिक जो सृष्टि या सृष्टि है और बौद्धिक सृष्टि है, इसके बीच के जो अंतर को समझना ही इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं, ऐसे परिभाषा देते हैं। तो क्या कमी है, कौन बताएंगे? नहीं समझ में नहीं आया आपको प्रश्न, पता चल गया प्रश्न क्या, मेरा प्रश्न क्या है, ये लोग इंटेलिजेंट डिजाइन का परिभाषा देते हैं, क्या परिभाषा देते हैं? इंटेलिजेंट डिजाइन मीन्स टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल कॉजेस एंड इंटेलिजेंट कॉजेस। हाँ वो लोग और भी उसको विस्तार करते हैं, वो लोग क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल कॉजेस अन इंटेलिजेंट नेचुरल कॉजेस ऐसे कुछ लेते हैं। तो उसका क्या हो जाता है, कुछ चीज है वो सृष्टि के द्वारा ही किए गए हैं, सृष्टि किए गए हैं, कुछ चीज है बौद्धिक बुद्धि उपयोग करके किया, सृष्टि किया गया है, इन दोनों के बीच के अंतर को समझना क्या है, इंटेलिजेंट डिजाइन, ऐसे उन्होंने परिभाषा दिया है। इंटेलिजेंट डिजाइन वो सत्य है इस सृष्टि करने, जैसे हम प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, क्या उदाहरण दिया प्रभुपाद जी ने, ये लोग अभी वो इंटेलिजेंट मूवमेंट चला रहे, प्रभुपाद जी तो बहुत इसके पहले ही उन्होंने ये सब चीज वर्णन किया। एक पेंटर है, पेंटर को क्या बोलते हैं उसको, चित्रकार है, वो क्या चित्र बनाता है, एक फूल का चित्र बनाता है, क्या फूल, एक फूल का नाम लीजिए, गुलाब का चित्र बनाता है। पहले जमाने में गुलाब मतलब गुलाब रंग के ही होते थे, अभी बहुत सारा रंग बना दिया है, गुलाब का चित्र बनाता है, तो गुलाब का चित्र बनाता है बहुत ही अपने बुद्धि, वो बहुत ही दक्ष चित्रकार है और बहुत बुद्धि लगाता है और अलग अलग रंगों को बहुत, उसको कला बहुत अच्छा है उसका हैंड, तो यू नो ही हैज सेट हैंड, वो चित्र बनाता है। और एक नैसर्गिक गुलाब है, दोनों को साथ में लेकर आए, कौन सा सुंदर दिखता है बताइए, हाँ जो नैसर्गिक है, ऐसे हम लोग बोलते हैं नैसर्गिक करके, दिस इज द प्रॉब्लम एक्चुअली, ये भाषा का समस्या है एक्चुअली, है ना। तो वो जो नैसर्गिक तथाकथित जो नैसर्गिक, क्यों ऐसे बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये लोगों ने ऐसे भाषा को बनाया है, दे हैव क्रिएटेड अ एथिस्टिक लैंग्वेज, एक्चुअली द लिंग्विस्टिक इटसेल्फ इज बेस्ड ऑन एथिज्म, प्राकृतिक ऐसे बोलते हैं, अंत में वो एक प्राकृतिक नहीं है, सब कुछ भगवान ने बनाया है ना। फिर भी या हम क्या समझते हैं, जो भगवान ने बनाया है वो फूल वो श्रेष्ठ है, पॉइंट क्या है, ऐसे जो चित्र बनाया उसके लिए कितना बुद्धि का जरूरत होता है, लेकिन वो निसर्ग में जो फूल है उसके लिए बुद्धि का जरूरत नहीं है, वो इससे भी सुंदर है ना, उसके लिए बुद्धि का जरूरत नहीं है। ये बुद्धि को ढूंढना, निसर्ग में बुद्धि को ढूंढना ही क्या है, ये इंटेलिजेंट डिजाइन कहते हैं उसको। वो लोग एक्चुअली उसको ऐसे परिभाषा देना चाहिए था, देर आर मेनी कॉम्प्लेक्स थिंग्स, वो लोग वो शब्द भी इररेड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटीज, प्रकृति में ऐसे जटिल चीज है, बहुत सारे ऐसे सुंदर चीज है, जटिल चीज है, जिसको हम लोग एक बौद्धिक डिजाइन के बिना उसको वर्णन नहीं कर सकते हैं, उसका जरूरत ही पड़ता है। तो इसलिए इंटेलिजेंट डिजाइनर है, ऐसे उसको परिभाषा देना चाहिए, है ना। वो लोगों ने क्या किया, डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट कॉजेस एंड नेचुरल कॉजेस, देन अगेन बिकॉज द होल लैंग्वेज इटसेल्फ इज एथिस्टिकल, समझ में आ गया ना, नैसर्गिक। लेकिन फिर भी एक पॉइंट आता है, हमारे दर्शन में भी, वैदिक और सृष्टि के दर्शन में भी निमित्त और उपादान दो कारण है, सृष्टि के कारण है ना। निसर्ग क्या है, एक एक वो भी एक कारण है, हम लोग उस स्तर पर उसको समझ सकते हैं। उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये परिभाषा ठीक है, एक नैसर्गिक, लेकिन हमें उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि लैंग्वेज क्या है, नास्तिक, अंत में कोई नैसर्गिक नहीं है, अंत में क्या है, भगवान ही सबका निमित्त है, निमित्त निमित्त और उपादान क्या है, निमित्त भगवान उपादान है, अंत में वही सबका स्रोत है, उसको हमें बताना पड़ेगा। और दूसरा चीज क्या है कि ये लोग सीधा वो उस हमने एक वो एक विलियम डेम्स्की करके एक वैज्ञानिक है, तो वो डबल पीएचडी इन मैथमेटिक्स और समथिंग लाइक दैट। सो उन्होंने एक ये इंटेलिजेंट डिजाइन क्या है ये, ऐसे उसका उन्होंने एक लेख लिखा है उन्होंने, तो उसमें वो कहते हैं, वो पूरी तरह वो क्लियरली मेंशन किया है उन्होंने कि इसका अर्थ नहीं है कि देर इज नो चांस ऑल्सो एग्जिस्ट। सो बेसिकली मेरा पॉइंट क्या है, इट्स अ कॉम्प्रोमाइज विद चांस, इंटेलिजेंट डिजाइन इज अ कॉम्प्रोमाइज विद चांस। लेकिन हम लोग जो चांस, आप वो पढ़े असत्यम अप्रतिष्ठम से जगदा और अनिश्वर, वो देखेंगे, वो श्लोक में देखेंगे तो प्रभुपाद वो चांस क्या है, नास्तिकवाद और असुर डिमोनिक बोलते हैं उसको। वी कैनॉट कॉम्प्रोमाइज विद चांस, सो देयर फॉर इंटेलिजेंट डिजाइन हैज टू बी रीडिफाइंड। ऑल्दो वो अच्छा है, डार्विन के विरुद्ध है वो लोग, हम लोग भी डार्विन के विरुद्ध है, अच्छा है, लेकिन इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड इट इज। तो ये लोग क्योंकि ये समझते नहीं है कि कैसे ये सभी भाषाएं बहुत नास्तिकवाद है और चांस में क्या गलती है, वो समझते नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो इस शासन में जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता है, लेकिन प्रभुपाद जी जैसे हम कह रहे थे पिछले श्लोक को उदासीन वत्त, उसको और इस तात्पर्य में वर्णन करते हैं। क्या उदाहरण देते हैं यहाँ पर, बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी कि एक व्यक्ति फूल को सुनता है, वो सीधी तरह से उसको वो छूने की जरूरत, जैसे हम लोग हर रोज भगवान को जो अर्पित किया हुआ फूल को सुनते हैं ना, हम लोगों को उसको टच करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही सुन सकते हैं। वैसे ही ये भौतिक प्रकृति कैसे कार्य कर रहा है, भगवान उसको सीधी तरह से टच में नहीं है, फिर भी उनके ही शक्ति के द्वारा ये सब संचालित है, ठीक है, उनके ही मार्गदर्शन के, उनके अध्यक्षता में सब कुछ चल रहा है। ये देखिए, ये सभी श्लोकों को आप इकट्ठा देखेंगे तो बार बार विरोधाभास आ रहा है यहाँ पर। कभी बोलते हैं ये सब मेरे ऊपर स्थिर नहीं है, मेरे से अलग है, मैं उदासीन हूँ, लेकिन फिर भी आगे और बोलते हैं कि मेरे अध्यक्षता में चलता है। तो ये अचिंत्य वेदाभेद तत्व को हमें समझना चाहिए, आधार पर समझना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। माफ़ कीजिए इस लंबे समय ले लिया हमने, सुबह भी हम लोगों ने प्रश्नोत्तर नहीं लिया ना, अभी भी लेना है। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी है, बहुत बार उसके ऊपर बहुत बोला है प्रभुपाद जी ने चांस के ऊपर, तो हम लोग कैसे उसको इंटेलिजेंट डिजाइन को स्वीकार कर सकते हैं, ये लोगों का परिभाषा को स्वीकार कर सकते
हैं। शंकर है, अगर 25 बार वो जंप करता है कैटगट के ऊपर, तो आइस कैंड नम छपाने का कितना चांस रहेगा उसके ऊपर? तो वो किन प्रॉब्लम उसके लिए ऐसा, वो तो पुलिस है, इतना एक्सीडेंट हो चलो सब जाएगा, फिर
बहुत सारे उदाहरण प्रभा जी बोलते चपाती भी क्या है उसके लिए भी डिजाइन चाहिए, डिजाइनर चाहिए, है ना। वही अपने आप नहीं आता है, यहाँ पर रसोई किचन में रसोई बना रहे हो, रसोई बना रहे उसका अर्थ है कि वो सभी इंग्रेडिएंट अपने आप इकट्ठा होके बॉयल होके आपके सामने आके गिर पड़ेंगे कि आप खाओ अभी हमें करके। हाँ ऐसा होता है क्या? उसके लिए भी बहुत बुद्धि चाहिए ना, चपाती बनाने के लिए भी बुद्धि और स्किल चाहिए ना, है कि नहीं? नहीं तो हम पहली बार जब जाते हैं तो चपाती बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया अमेरिका सब हो जाते हैं, है कि नहीं? ये इतना मूर्ख लोग है पाश्चात्य देश में कि उनको इतने लंबे समय से भी उनके समझ में नहीं आ रहा। अंधेरा है, अंधेरा में है सब लोग। वो है ना प्रबोधानंद सरस्वती, सर्वम विश्वम पूर्ण सुखाय थे, ऐसे हमें जब भगवान से उसको अलग कर देते हैं तब समस्या आ जाती है, भगवान के संबंध में। इसलिए आपकी सृष्टि मधुर है क्योंकि वो भगवान के संबंध में देखा, क्योंकि भक्त को क्योंकि भगवान के संबंध में देखने के कारण विश्वम पूर्ण सुखाय थे हो जाता है ना। आपको तो ऐसे नहीं हो रहा है ना कि इतना जगत ये कितना क्रूर है, मुझे कोई समझता नहीं है, कितना मेरे ऊपर अत्याचार हो रहा है, ऐसे तो नहीं लग रहा है ना। आप आनंद में हैं भक्ति करते करते हैं। और भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का शक्ति है, और भगवान की सेवा में उसको लगाना चाहिए सब कुछ भौतिक जगत में। ठीक है, कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी? शांडिल यज्ञवल्क, शांडिल ऋषि वो एक धर्मशास्त्र उन्होंने लिखा है, और वैश्वानर मुझे पता नहीं क्या खाना तो वो है ना वैशेषिक। यज्ञवल्क जैमिनी और कर्म मीमांसक है, कर्मवाद ठीक है, कुछ चीज़ों को स्वीकार कर सकते हैं। वो वैष्णव लोग कौन सा पालन करते हैं? वो श्री वैष्णव धर्म में है ना, वो एक धर्म शास्त्र है जिसको वैष्णव लोग पालन करते हैं। वही वही मैं बताया ना, वो धर्म शास्त्र को लिखा है उन्होंने यज्ञवल्क्य संहिता, लेकिन प्रभुपाद जी उनको कर्म मीमांसा में डाल देते हैं, जैमिनी और यज्ञवल्क्य का एक ही बर्ड्स ऑफ फिदर। वो तो मुझे पता
नहीं,
नहीं वो भी है भागवत में, भागवत में ही कहा गया ना उनके शिष्य को क्या किया गया, ये वेदों के एक भाग अलग 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 विभाजन किया उन्होंने व्यास वेद व्यास ने, अलग अलग विभाजनों को अलग अलग भाग को विभाग को अलग अलग शिष्यों को दिया उन्होंने, जैमिनी को भी एक विभाग देते हैं प्रचार करने के लिए। तो ये दो जैमिनी के बारे में मुझे तो पता नहीं, आपको पता रहेगा तो ठीक है। आज तक मैंने ऐसे ही सोचा वही जैमिनी पथभ्रष्ट हो गया वेदांत के ज्ञान से, उन्होंने बताया
वो बता रहे हैं।
दिमाग झुकने को भी व्यस्त होगा प्रॉपर्टी से बनता है जो जिसका जिम्मेदारी है वो दिमाग शक्ति तरफ बढ़ गया वो प्रकट करना चालू कर दिया
हो सकता है ऐसा भी हो सकता क्योंकि कपिल भी दो है ना जो भगवान के अवतार है और नास्तिक कपिल भी है
तो हम जो जो भक्त लोग होते हैं जो पहले समय के अंदर वैदिक समय के अंदर जब यज्ञ होते थे वो एक मीमांस का फिलोसफी बहुत कम करता हूँ सभी के उनका जो जो लक्ष्य है वो उनको लोग मानते नहीं है ऐसा
नहीं 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 ये सब क्षण दर्शन जो है वो वेदों से लेकर वो स्वतंत्रता रूप से पथभ्रष्ट आत्म संप्रदाय है बस वो तो वेदों में ही है ये सब चीज लेकिन बाहरी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको एंटी वेदिक कहते हैं क्यों वेदों के जो बाहरी चीजों को वो लेकर उन्होंने स्वतंत्रता से उसको बढ़ाया लेकिन वेदों का सार क्या है वेदश्च सर्वे रामेव वेदे वेदों भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं किया तो वो नास्तिक है वो सर्वोच्च परिभाषा है नास्तिकवाद का भगवान कृष्ण को स्वीकार करना ये लोग अलग अलग नास्तिकवाद का भी अलग अलग परिभाषा होते हैं पहला परिभाषा क्या है वेदों को नहीं मानना वो नास्तिक है वेद न मानिया बौद्ध हो लो नास्तिक चेतन चेतन बौद्ध क्या जैन बौद्ध चार्वक वगैरह वो लोग बौद्ध और जैन क्या है वो लोग नास्तिक है फिर जो चार्वक नास्तिक इसलिए है क्योंकि वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते प्रणम कृत्वा घृतम पीवेद यावा जीवेद सुखम जीवेद भस्मी भूतस्य देहस्य कुतपुनः ये शरीर को भस्म करने के बाद फिर वापिस आने का क्या कहाँ है क्या प्रश्न उठता इसलिए वो नास्तिक है क्योंकि वो आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते तो कोई कोई पुनर्जन्म को स्वीकार नहीं करते आत्मा को अस्तित्व को स्वीकार करते हैं लेकिन पुनर्जन्म को अस्तित्व को स्वीकार नहीं वो भी चार्वक भी ऐसे वो एक अंत में सर्वोच्च नास्तिकवाद का परिभाषा है भगवान कृष्ण को स्वीकार नहीं करना तो वो नास्तिकवाद का सर्वोच्च है तो कई वेदों के अनुयायी भी हो सकते हैं लेकिन फिर भी वो नास्तिक है क्योंकि वो अंत में सर्वोच्च वेद का जो सार है लक्ष्य क्या है उसको स्वीकार नहीं करता इसलिए ये लोग क्या है हालांकि वेदों को उन्होंने अपने सत्य को वेदों से ही लिया उन्होंने लेकिन अंत में वो लोग नास्तिक बन गए या लेकिन वो पूर्ण नहीं है और वो सभी सत्य नहीं है या उनके कुछ अंश सही हो सकते हैं लेकिन परिपूर्ण नहीं है और नहीं सिर्फ वो उतना ही नहीं है परिपूर्ण उतना ही नहीं है वो एंटी वेदिक क्यों है क्योंकि अंत में वो भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो जो भगवान को अलग होकर कुछ वर्णन करना चाहते हैं तो वो क्या हो जाता है जो अंत में जो वैदिक वर्णन है उससे विरुद्ध हो जाता है समझ में आ रहा है
मगर जो न्याय दर्शन है उसमें तो भगवान को स्वीकार न्याय में और योग में दोनों में वो ईश्वर को एक्सेप्ट करते हैं वो
ठीक है वो ठीक है लेकिन वो क्या है अंत में निष्कर्ष जो है वो देते नहीं है क्योंकि वो सिर्फ न्याय में क्या होता है एक सत्य को समझने का जो क्या है आधार है उसको स्थापित करते हैं बेसिकली कैसे लॉजिकली वी हैव टू यू
नो लॉजिकली प्रूव करते हैं कि ईश्वर है लॉजिकली
इसके बेस करते हैं नहीं उसमें क्या समस्या हो जाता है कि वो लॉजिक ही परिपूर्ण मान लेते हैं तो वो समस्या हो जाता है लेकिन तर्क ही परिपूर्ण नहीं है शब्द प्रमाण परिपूर्ण है या लेकिन पूरी तरह से उसको स्वीकार नहीं करते हैं तर्क बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है
तर्क के द्वारा ऐसा मिस करते हैं कि शब्द प्रमाण इस केस में बोले प्राप्त करने के लिए ऐसा उनका दर्शन के अनुसार नहीं के
या वी कैन डिस्कस देम लेटर सम अदर टाइम उनके उनमें क्या क्या गलतियाँ हैं भगवद गीता में भी है वो सब ये सभी छः दर्शन सभी वर्ण चर्चित
भगवान
छः छः
दर्शन का खंडन किया
है इसलिए पहले तात्पर्य में ही प्रभाव होते हैं ना वैदिक जो भगवद गीता को अध्ययन करते हैं उसको वैदिक उसमें क्या आता है दसवें अध्याय में वो आता है ना तर्क के बारे में सभी वादों में मैं क्या हूँ, अंतिम निष्कर्ष हूँ, ऐसे भगवान बोलते हैं ना। उसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो रॉन्ग वेज ऑफ आर्ग्यूइंग एंड लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंट्स, छल वितंड छल निग्रह आदि अनेक, लाइक दैट देर आर मेनी रॉन्ग वेज ऑफ आर्ग्यूइंग। सो सच पीपल आर कॉल्ड एज लॉजिशियंस, मंडेन लॉजिशियंस। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से क्या है, गौतम का जो ये है न्याय है। मुझे ये पता नहीं है कि क्या गौतम ही वो पूरी तरह से पथभ्रष्ट है या उसके बाद में उनके अनुयायी पथभ्रष्ट हो गए और बहुत तार्किक तर्क को ज़्यादा जोर देने लगे वो लोग। लेकिन वो ये सब क्या है, गलत तर्क करने का गलत विधियाँ है। वो चैतन्य महाप्रभु और सर्व भट्टाचार्य के बीच में ऐसे चर्चा होते समय ये होता है ना, कभी कभी तर्क करते समय जंप करते रहते हैं, एक विषय से दूसरा विषय, एक विषय से ऐसे, ये सब अलग अलग छला वितंड, इसको निग्रह कहते हैं, उसका भी परिभाषा भगवत प्रभुपाद जी भी देते हैं इस तात्पर्य में, दसवें अध्याय हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो ऐसे तर्क में लग के वो लोग क्या हो गए, पथभ्रष्ट हो गए, तो वो उसका समस्या है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ऐसे तार्किक था, मायावादी भी था, वो लोग ऐसे तर्क को भी वो ले लेते तर्कशास्त्र को भी। तो महाप्रभु उनको खंडन किया, वितंड चल निग्रह आदि अनेक उठाएला सबकंडे प्रभु निज मते स्थापिला। तो सभी उनको खंडन करके अपने मत को स्थापित किया चैतन्य महाप्रभु, मतलब जो सत्य सिद्धांत है उसको स्थापित किया। सो इसलिए ना समटाइम्स यू हैव सीन ड्राई लॉजिशियंस इन प्रॉपर बुक्स, ड्राई लॉजिशियंस ऐसे शब्द तार्किक, चैतन्य चरितामृत में भी तार्किक गण ऐसे, अधम पड़ुआ तार्किक गण ऐसे, मायावादी अधम पड़ुआ तार्किक गण बहुत सारे थे, इसके लिए उन्होंने संन्यास लेके उनको खंडन किया चैतन्य महाप्रभु। तो सीधा क्लियरली बताया हमारे आचार्य ने, ये सब एंटी वैदिक और नास्तिक है। हालांकि ये आस्तिक विद्या जब भारत के दर्शनों को हम लोग देखते हैं, इंडियन स्कॉलर्स वो लोग विद्वान लोग क्या कहते हैं उसको, आस्तिक विज्ञान आस्तिक दर्शन कहते हैं, क्योंकि ये वेदों को स्वीकार करते हैं, लेकिन अंत में ये भी नास्तिक। वैसे आप 62nd ब्रह्म संहिता 62nd वर्ष पर्पट में पढ़ेंगे तो भक्ति सिद्धांत सप्तर्षि चक्र तो इस हद तक जाते हैं, ये वैष्णव दर्शन भी परिपूर्ण नहीं, दे आर ऑल्सो स्पेकुलेशन। अंत में अचिंत्य वेदा वेदी एक ही सत्य है, वहीं पर वो ये सभी षट दर्शनों को एंटी वेदिक बता दिया। कि मेन चीज क्या है, वो किस स्तर पर विरोधाभास क्यों आता है, किस स्तर पर ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, उस स्तर पर आप भगवान कृष्ण भगवान है परम सत्य है, उस स्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे तो ये सब नास्तिक हो जाता है। और वैष्णव दर्शन भी क्या हो जाते हैं, वो परिपूर्ण नहीं होते, क्योंकि अंत में उस स्तर पर क्या है, सिर्फ अचिंत्य वेदा वे सत्य। लेकिन अन्य स्तर पर भी हम थोड़ा कम से कम ये विष्णु भक्त है तो
हम कृष्ण के स्तर से देखें तो सब अलग अलग दर्शन जो है वो पूर्ण परंपरा में नहीं आने के कारण, या फिर पूर्ण परंपरा में आदि रहे गए था जो वैष्णव संप्रदाय है, उनको एक मेंटेन रखा था उनका, ये जो मूल था तो मीन्स दृष्टिकोण से तो सब लोग अपना अपना दृष्टिकोण से समझा रहे हैं, ऐसा है सत्य को समझा रहे हैं, और जो गौड़ी वैष्णव जो है वो पूर्ण रियलिटी को जानते थे, वो सबको एक्सप्लेन कर पाते हैं हर रियलिटी को, ऐसा है। छह दर्शन भी है वो अपने अपने अनुसार समझा रहे हैं अपने अपने दर्शन के अनुसार, अगर क्योंकि वो लोग ना परंपरा में नहीं आते, जैसे भगवान को एक्सेप्ट नहीं कृष्ण को नहीं बन पाते, इसलिए वो खाली कुछ लोग काट कर जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते।
इसलिए उनको भगवान को जोड़ने नहीं जोड़ दिया तो वो हो जाता है आस्तिक, नास्तिक ही हो जाता है। जब भगवान को जोड़ते नहीं तो वो नास्तिक।
इस प्रकार से भी हमने चर्चा किया वो मेडिक को एवोल्यूशनिस्ट में है और इंटेलिजेंट डिजाइन है, तो हमारे दृष्टि से देखा जाए तो दोनों नास्तिक है ऐसा, दोनों ही फिटिंग है, मगर जब हम उनके पक्ष पे आएंगे ऐसा तो कम से कम डार्विनिज्म के कंपैरिजन में
एक कदम आगे है। डेफिनेटली एक कदम आगे है। तो मेरा पॉइंट क्या है, हम लोग क्यों ना उसको अच्छी तरह से डिफाइन करें, वो मेरा पॉइंट है। क्योंकि वो इसलिए